श्री गिरि गोवर्धन की, श्री जमुना मई की, समस्त भक्त वृंद की जय जय श्री राधे श्याम। सबको मेरी विनती है, कृपा करके सामने आके बैठिए, थोड़ा सा आप भी लोग आगे आके बैठिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। सब लोग बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस उत्सव के उपलक्ष में आप सबका श्री गोवर्धन इको विलेज में स्वागत है। हरे कृष्णा। और बहुत बहुत धन्यवाद भी है, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और भगवान के ही चिंतन में ये पूरा उत्सव मनाने का निश्चय बनाकर आप लोग आए हैं, इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और ऋणी हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं हम लोग? इसका कारण यह है कि परम पुरुषोत्तम गौलोकेश्वर परात्पर भगवान श्री कृष्ण का ये आविर्भाव दिवस है। इसको हम जन्मदिन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। हम लोग नर मादी के संयोग से गर्भधारणा करके योनि मार्ग से बहुत पीड़ा कष्ट प्राप्त करके जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान इस प्रकार से जन्म नहीं लेते हैं। भक्ता भगवान अवतरित होते हैं, अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं और जन्म नहीं लेते, वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के जन्म को यानी कि आने को आविर्भाव कहा गया है। तो ये जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये श्लोक सभी मेहमानों को, अतिथियों को, भक्तों को, सब प्रकार के लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जन्म और भगवान का अवतार इसमें जो अंतर है वो है दिव्यता, यानी कि भगवान का अवतार होता है वो तीन गुणों के प्रभाव में नहीं होता है, तीन गुणों के बाहर यानी तीन गुणों के परे होता है, इसलिए उसको दिव्य कहते हैं। दिव्यता का मतलब है जो तीन गुणों के प्रभाव के अंदर नहीं है। और भगवान आने के बाद जो कार्य करते हैं वो भी इसी तीन गुणों के परे रहते हैं। हमारे सारे कार्य जो है वो तीन तीन गुणों के अंतर्भूत होते हैं। कभी सत्व गुण में अच्छा कार्य करते हैं, कभी रजोगुण में बहुत सारा लगाव वाला कार्य करते हैं, कभी तमोगुण में बहुत घटिया काम करते हैं, और कभी कभी मिक्सचर में भी करते हैं, सत्व रज, रज तम और सत्व तम, ऐसे भी करते हैं। हर बार इन तीनों प्रकार के कार्यों में या उनके मिक्सचर के कार्यों में हमेशा उसके फलों में फंसे रहते हैं। कुछ कार्य करते हैं उसका फल मिलता है, फलों में हमको बंधन में रहना पड़ता है, फल भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई फल नहीं होता है, वो किसी गुड़ में नहीं कार्य करते हैं, किसी फल के बंधन में नहीं फंसते हैं, वो त्रिगुणातीत हैं। और ये जो भगवान का त्रिगुणातीत होना है, भगवान का कार्य दिव्य है, ये हमको अगर समझ में आता है तो भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति को मेरे आना, मेरा आना और मेरा लीला, इसकी दिव्यता समझ में आती है, वो इस जन्म के अंत में मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसलिए जन्माष्टमी मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जन्माष्टमी उत्सव मनाएंगे तो सुनेंगे, सेवा करेंगे भगवान की, अपने इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की सेवा में लगाएंगे, भक्तों की सेवा में लगाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा कहेंगे, भगवान की कथा पर चिंतन करेंगे, भगवान के लिए वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ही तीव्र मात्रा में हमारी चेतना भगवान की ओर आकृष्ट हो जाएगी, और भगवान की ओर आकृष्ट होने से भगवान का जो विशुद्ध सत्व गुण है वो हमारे अंदर प्रवेश करने लगेगा। अभी हम ऊपर नीचे हो रहे ना, सत्व रजतम में, वो इस उत्सव के उपलक्ष में भगवान के विशुद्ध सत्व गुण के पास जाएगा। भगवान का जो गुण है विशुद्ध सत्व, वो सत्व गुण से भी परे है। जैसे तीन जंजीरें हैं, एक सोने की जंजीर है, एक चांदी की जंजीर है, एक लोखंड की जंजीर है, लेकिन एसेंशियली क्या करती है, जंजीर हमको बांध देती है ना। हम ये नहीं कहते देखो देखो आपको लोहे की जंजीर से बांधा है, मुझे सोने की जंजीर से बांधा है, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, लेकिन है वो तो जंजीर ही, और आपको तो बांध के ही रखा है उसने। तो भगवान का जो उत्सव है, क्योंकि भगवान विशुद्ध सत्व में है, भगवान का उत्सव मनाना भी उसी गुण में है, विशुद्ध सत्व गुण में। और हमारे लिए एक मौका है वो, कि बार बार लगातार इन तीन गुणों में फंसने के बदले में कुछ समय के लिए भगवान के पास में रहे, रोज के पैमाने पे भी रह सकते हैं भगवान का नाम लेकर, भगवान के भक्त बनते हुए, या रोज नहीं ले रहे तो जब भगवान का जन्म का उत्सव होता है, भगवान के आविर्भाव का उत्सव होता है, तभी तो कम से कम उसका लाभ लेकर हम भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए हर जीव जो अपने आप को मनुष्य कहलाता है, देवता कहलाता है, उच्च योनि का जन्म जिसको प्राप्त है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये माधव तिथि भगवान का जन्म दिवस, आविर्भाव दिवस मनाना बहुत जरूरी है। माधव तिथि भक्ति जानी, क्योंकि माधव तिथि जैसे कि जन्माष्टमी, राम नवमी, नरसिम्हा जयंती जब मनाते हैं तो ये भक्ति प्रदान करती है। ये माधव तिथि का पालन करना यानी भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि यह तिथि में इतनी शक्ति है कि वो हमको भक्ति प्रदान कर सकती है। इस साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर है ये, इसलिए हर व्यक्ति को ये मनाना बहुत जरूरी है। हम लोग आजकल अपना समय किसमें बिताते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति जो है पॉलिटिशियन, उसका जन्मदिन मनाते हैं, 50 वगैरह बोर्ड लगाते हैं बड़े बड़े, हार्दिक जन्म अभिनंदन क्या क्या लिखते रहते हैं उसके अंदर, हजारों रुपये खर्च करते हैं। लेकिन जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, ऐसा लोगों का जन्मदिन मनाने से कुछ लाभ नहीं होता है। भगवान जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले मुकुंद हैं, ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाना चाहिए। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका बर्थडे मनाना चाहिए, वो है संत लोग, वैष्णव लोग, जो भगवानमय है, कृष्णमय है, भगवतमय है, जिनका जीवन भगवान से समर्पित है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, जिनका जीवन दृढ़ व्रत से भगवान के कीर्तन में मग्न है, समर्पित है, ऐसे लोगों का जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और दुनिया को उस बंधन से मुक्त कराने वाले हैं। एक सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है आनंद वृंदावन चंपू, कवि कर्णापुर इस महाकवि हुए हैं, बहुत सुंदर श्रेष्ठ वैष्णव। उन्होंने लिखा है कि जयंती शब्द जो है वो केवल भगवान को ही उसका प्रयोग करना चाहिए। क्या लिखा है उन्होंने बता दो आपको, देखो, अष्टमी कृष्ण पक्षस्य रोहिणी वृक्ष संयुता भवेत प्रौष्ट पदे मासी जयंती नामसा स्मृता, जयंती नामसा स्मृता हवावी। इसका मतलब भगवान के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को जयंती शब्द का प्रयोग करना योग्य नहीं है। फिर हमारे जीव गोस्वामी जी ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, संदर्भ कहते हैं उसको, उसमें एक संदर्भ है श्री कृष्ण संदर्भ, उसमें वो लिखते हैं 29वें अनुच्छेद में, नैवम अवतारांतरस्य कस्य वान्यस्य जन्मदिनम जयंती आख्यया अति प्रसिद्ध यथा श्रीकृष्णस्य, यथा श्री कृष्ण से ओनली, केवल श्री कृष्ण के लिए। इसलिए जयंती नाम का प्रयोग जो है ये केवल भगवान के अवतार के लिए होना चाहिए, और किसी व्यक्ति को, किसी राजनीति व्यक्ति को, पॉलिटिशियन को, फिल्म स्टार को जयंती शब्द लगाना अपराध है, क्योंकि वो केवल भगवान का अधिकार है। और भगवान आते क्यों हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा भगवान के धाम के बारे में वर्णन करेंगे जहां भगवान रहते हैं। हाँ, भगवान के धाम का नाम है गौलोक धाम, वो परम वैकुंठ है। ये भौतिक दुनिया जो है इसको ब्रह्मांडों का सागर कहते हैं, ब्रह्मांड बहुत सारे ऐसे भरे हुए हैं, एक बड़ा बादल है उसका वो कहते हैं महत्तत्व, उसकी छाया में ये सब भौतिक दुनिया भरी हुई है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसके अंदर, हर एक ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है, 7 स्वर्गलोक, 1 पृथ्वीलोक, 6 नरकलोक, ऐसे एक सेट है पूरा, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जैसे एक 100 किलो राई के पोते में कितने राई के दाने रहेंगे गिन सकते हैं क्या आप, उतने अनंत ब्रह्मांड जो है इस दुनिया में है। लेकिन सब ब्रह्मांड में आ ब्रह्मा भुवनार्लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, ये सब ब्रह्मांडों में क्या होता है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी चलते रहता है। ब्रह्मा तक को भी ये जन्म मृत्यु का चक्र का अनुभव करना पड़ता है, ब्रह्मा भी जन्म मृत्यु में बंधे हुए हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। अगर उनकी मृत्यु नहीं होती होती तो हिरण्यकश्यपु को उन्होंने तुरंत कह दिया होता तथास्तु, उसने क्या वरदान मांगा था, मुझे अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया उनको, कहते हैं कि मैं खुद ही मृत्यु के अधीन हूं, मैं पहले अपने आप को मृत्यु से मुक्त करूं फिर आपको अमरता का वरदान दूं, जो मेरे पास है वही मैं आपको दे सकता हूं ना। तो ये ब्रह्मांड के सबसे पहले नागरिक ब्रह्मा जी हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ यूनिवर्स, और वो भी मृत्यु के अधीन है। तो कहने की बात यह है कि इन ब्रह्मांडों के परे एक नदी होती है, इसका नाम है विरजा नदी, वो जन्म मृत्यु वाले और बिना जन्म मृत्यु वाले लोगों को अलग कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो अगर विरजा के पीछे आप जाएंगे तो आपको ब्रह्म ज्योति मिलेगी। ब्रह्म ज्योति का मतलब क्या है, भगवान के शरीर से निकली हुई आभा, उस नीली सी आभा में अनंत वैकुंठ विराजमान रहते हैं। वैकुंठ का मतलब क्या है, जहां पर जन्म मृत्यु का दुख नहीं है, वैकुंठ। नीचे के लोगों को कहा गया है कुंठ, और वो है वैकुंठ, जो परे है उसके, कुंठ यानी जन्म मृत्यु के दुख से परे स्थिति को वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ एक नहीं है, ऐसे अनंत वैकुंठ है। विष्णु भी एक नहीं है, अनंत प्रकार के विष्णु हैं, और एक विष्णु एक वैकुंठ पर राज्य करते हैं, लेकिन वहां पर जन्म मृत्यु नहीं होता है। ये वैकुंठ के परे कुछ खास वैकुंठ होते हैं, स्पेशलाइज्ड वैकुंठ, विशिष्ट वैकुंठ, वो है द्वारका, अयोध्या और मथुरा। उसमें भगवान का जो सानिध्य है वो और उत्कट तरीके से उस मुक्त जीव को प्राप्त होता है। लेकिन वहां पर भी दास्य भाव होता है, भगवान के हम गले में गले हाथ डाल सकते नहीं है, गुल्ली डंडा नहीं खेल सकते भगवान के साथ, नदी में नहीं कूद सकते भगवान के साथ, दूर से ओम नमो नारायणाय दूर रहते हैं भगवान, बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं, और केवल दास्यता के साथ हम लोग वहां रह सकते हैं। थोड़ा और नजदीक जाएंगे भगवान के दास्यता में तो द्वारका है, फिर अयोध्या है, प्रभु रामचंद्र वहां रहते हैं, उसके आगे मथुरा है जहां देवकी वसुदेव श्री कृष्ण ऐश्वर्य भाव में रहते हैं। इन विशिष्ट वैकुंठों के परे एक लोक है जिसका नाम है गौलोक वृंदावन। सब लोग बोलेंगे गौलोक वृंदावन। क्यों मैंने बुलवाया आपसे नाम, क्योंकि हम सब लोगों को वहां जाना है, समझो आपको कहीं जाना है और उसका एड्रेस पता नहीं है, आप पहुंच सकते हैं क्या वहां पर? आप नहीं पहुंच सकते। जहां पर जाना है समझो, वाड़ा में जीवी कोवर्धन इको विलेज में आना है तो पूरा आपको गूगल मैप निकाल के उसका पूरा दिशा दिखाना पड़ेगा, कहां से कहां मुड़ना है, कहां जाना है, कितने किलोमीटर आगे जाना है, फिर राइट टर्न, फिर और एक राइट टर्न हमरापुर में, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर, फिर उस घर आने के बाद भी कहां रहना है, जंगल विला में रहना है कि बरसाना में रहना है कि वृंदावन में रहना है कि गोकुल कॉटेज में रहना है, कहां कहां है पता होना चाहिए आपको। बुकिंग तो कर दिया लेकिन पता नहीं किधर है, तो पहुंचेंगे कैसे? उसी तरह से इस जीवन को समाप्त करने के बाद में भगवत भक्ति प्राप्त करके चिरंतन धाम में जाना है तो उसका नाम तो पता होना चाहिए, उसका नाम है गौलोक वृंदावन। अभी गौलोक वृंदावन में वर्णन किया गया है, गौलोक वृंदावन में क्या है, जहां भगवान रहते हैं वहां पर क्या स्थिति है, ये मैं क्यों बताने जा रहा हूं कि किस स्थिति को छोड़कर भगवान यहां पर आ रहे हैं हमारे लिए, ये बताने के लिए मैं ये वर्णन करने जा रहा हूं। वहां पर कहते हैं कि शरीर जो होता है वो दिव्य होता है, सच्चिदानंद शरीर होता है, भगवान का शरीर तो परम सच्चिदानंदमय है, सब शरीरों का उगम है, उस शरीर से सुगंध निकलती है, पूरा वातावरण सुगंधमय है, वहां सब प्रकार के जीव हैं, मनुष्य जीव नहीं है केवल, सब प्रकार के जीव है, सत सिद्ध जीव है, किसी को जन्म मृत्यु नहीं है, सब लोग भगवान की भक्ति में रत रहते हैं, इतना भगवान से प्रेम करते हैं कि भगवान के अलावा उनके मन में कोई चिंतन ही नहीं होता है, सब भगवतमय है, भगवत सेवामय है, भगवान में लीन है, समर्पित है। वहां पर कोई बोलते नहीं है, वहां पर सब लोग गाते हैं, यानी कविता में वार्तालाप करते हैं, इतना सुंदर होगा ना वो, आप कविता में उत्तर बोलेंगे मैं कविता में उत्तर दूंगा, सब गीत ही गा रहे हैं, सब संभाषण वार्तालाप संवाद जितना भी है वो गीत में हो रहा है। हम लोग अभी आप अपने कमरे से चल के आए ना, या तो वो क्या कहते हैं उसको बैटरी में बैठ कर आए होंगे शायद, लेकिन वहां पर गौलोक धाम में कोई चलता नहीं है, सब लोग केवल डांस करते हैं, क्योंकि वहां का हर एक कदम नित्य है, एवरी स्टेप इज ए डांस। आप सोच सकते हैं, अपने बालकों को देखा है ना कभी, बालक चलते हैं कभी क्या, वैसे डांसिंग करते रहते, दौड़ते रहते हैं तो डांस करते रहते, इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर, इतनी पवित्रता होती है, इतनी निष्पापता होती है कि उनके कदम ऐसे चलते नहीं है, डांसिंग ही रहते हैं। अभी आप इधर आ जाओ बोलेंगे तो डांस करते ही आ जाएंगे। वैसा गोलोक धाम में सब लोग श्री कृष्ण भगवान राधा रानी गोपी ग्वाल बाल जितने भी सब लोग हैं सब डांस ही करते रहते हैं। जितने भी पेड़ है वहां पर वो सब कल्प वृक्ष है, दिव्य वृक्ष है, आपके मन की इच्छा पूरी कर देंगे, आप खाली आ करो तो गुलाब जाम मुंह में आ जाएगा। हाँ, कोई प्रकार की इच्छा करो, आप किसी प्रकार की इच्छा करो। और अच्छी बात यह है कि वहां पर कोई भगवान के संतुष्टि की अलावा कोई इच्छा ही नहीं करता है, वहां पर केवल भगवान के लिए इच्छा करता है। मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया कि ये भी पूरा हो सकता है, ऐसे पेड़ वहां पर है, कल्प वृक्ष, मन में आने वाली हर इच्छा को पूर्ण करने वाली क्षमता रखने वाले वृक्ष है सब। और भूमि कैसी है जिसमें सब लोग नाच कर रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सदमशु, चिंतामणि यानी ऐसा रत्न है वो जो स्वयं प्रकाशित है, और वो रत्न ऐसा है कि वो भी सभी लोगों की सब इच्छाएं पूर्ण करने वाला है, चिंतामणि। ऐसे चिंतामणियों से गोलोक वृंदावन की भूमि बनी हुई है, इतना सौंदर्य है वहां पर, इतना आनंद है, इतना सुगंध है, हर इंद्रियों को तृप्त करने वाली वातावरण है। वो तो भौतिक स्थितियों का वर्णन किया मैंने आपको, लेकिन इतना प्रेम है वहां के लोगों को भक्तों के भगवान के प्रति कि भगवान और उनमें नित्य लीला चलती रहती है। इसलिए कोई संत का जब देहांत होता है ना, तो हमको क्या क्या कहते हैं, हम पदवी लगा देते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। यानी कि अभी ये पृथ्वी पर थे, कल्याण करने के लिए आए थे, अभी अपना कल्याण का कार्य समाप्त करके नित्य लीला में प्रविष्ट प्रवेश कर चुके हैं। तो नित्य लीला क्या है, जो भगवान और उनके अति प्रिय, अति उत्कट, अति निकट भक्तों के बीच में निरंतर चलते रहता है। और वो कौन सी लीला है, केवल प्रेम की लीला है। उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई निजी अपेक्षा नहीं है उसके अंदर कोई। और भगवान और भक्तों को अति 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 प्रचंड आनंद देने वाला कार्य है वो। और उसमें कोई क्या कहते हैं ना, आज लीला किया तो कल वही डुप्लीकेशन नहीं है उसके अंदर। हर रोज नव नवायमान नव यौवन लीला है। भगवान का सौंदर्य भी हर रोज नया है। भगवान का एक शब्द वर्णन किया गया, अदृष्ट, यानी भगवान को किसने देखा ही नहीं है। मतलब क्या हुआ उसका, अरे कल भी देखा था, लेकिन कल जो थे वो आज नहीं है, आज डिफरेंट है, इसलिए आज आज की जो है आपने देखा नहीं है। समझ में आपको आया? वो तो निरंतर है, चिरंतन है, सबके सामने गोलोक में विराजमान है वो, लेकिन फिर भी अदृष्ट है, क्योंकि आज जो दर्शन हो रहा है वो कभी पहले आपने देखा नहीं है, किसी ने भी देखा नहीं है गोलोक वृंदावन में, इसलिए उनका एक नाम अदृष्ट है। ऐसे प्रेममय वातावरण में अनंत लोग वहां रहते हैं। थोड़ा आपको समझाने के लिए बता दे, समझो आपका भारतवर्ष है, ये बॉम्बे सिटी है, समझो कितने लोग हैं बॉम्बे सिटी में, 1.25 करोड़ लोग रहते हैं। बॉम्बे में बहुत सारे जेल भी है, तो जेल में कितने लोग रहते हैं, 1.25 करोड़ रहते क्या? नहीं होंगे, 20-25 हजार, उतना ही जेल का कैपेसिटी है। बहुत सारे गुनहगार बाहर भी घूमते रहते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि जेल में लोग कम रहते हैं और शहर में ज्यादा रहते हैं। अच्छे लोग जो शहर के नियमों का पालन करते हैं वो बाहर रहते हैं, मतलब घर में रहते हैं अपने, और जो गुनाह करते हैं, शहर का नियम तोड़ते हैं, उसको प्रशासन कैद करके जेल में डालता है, ताकि जेल वाले जो गुनहगार हैं वो सामान्य जनों का जीवन जो है वो डिस्टर्ब ना करें, है ना? तो संख्या कम होती है ना उसकी। वैसे हमारा जो ये मटेरियल वर्ल्ड है जहां पर हम लोग रहते हैं, वो एक दुर्ग है, वो एक जेल है, यहां पर भी अनंत लोग रहते हैं। एक ब्रह्मा लोक में कितने लोग रहते हैं, स्वर्ग लोक में, मर लोक में, जन लोक में, तप लोक में, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, और नीचे पाताल लोक, बीच में पृथ्वी लोक, कितने अनंत जीव है गिन सकते हैं उसमें आप। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि वो एक नगण्य हिस्सा है जितने लोग गौलोक वृंदावन में रहते हैं। यानी कि हम जैसे लोग जो भगवान को छोड़कर यहां पर आए हैं वो बहुत कम संख्या में है, और भगवान के साथ जो रह रहे हैं वो प्रचुर मात्रा में है। यहां से जितने लोग इस भौतिक दुनिया में रह रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, उससे करोड़ों अब्जों गुना लोग वहां पर भगवान के साथ रहते हैं। और वो सब लोग कैसे हैं, कोई स्वार्थी नहीं है, भगवान पर प्रेम करते हैं, अपना जीवन समर्पित है, और भगवान उनसे दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाले लीलाओं को संपन्न करते रहते हैं। भाई कितनी अच्छी स्थिति है, आप देखो क्या जरूरत है उनको यहां आने की। इतना अच्छा आनंदमय वातावरण है, इतने अच्छे प्रेममय भक्त हैं, कोई नित्य सिद्ध है, कोई कला साधना सिद्ध है, कोई कृपा सिद्ध है, लेकिन सब लोग सिद्ध हैं, प्रेम सिद्ध, और सब प्रेम सिद्ध लोगों के साथ भगवान वहां आदान प्रदान कर रहे हैं दिन रात अनंत समय। कोई वहां पर ये बिजली के लाइट की जरूरत नहीं है, कोई सूर्य की जरूरत नहीं है, कोई चंद्र की जरूरत नहीं है, न सूर्य न शशांक को कोई जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाशित है। भगवान के शरीर से जो आभा निकल रही है उसमें वो लोक, उससे वो लोक प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित। केवल वही नहीं, सारे वैकुंठ भी प्रकाशित है, उस प्रकाश में ही सब वैकुंठ विराजमान है। इतना सुंदर वातावरण जो है ना, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसका ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं लास्ट श्लोक में गोलोक धाम का। कभी आपको आराम से बैठ के पढ़ना चाहिए, ताकि हमको प्रेरणा हो जाए कि हम वहां चलें, यहीं पर कितना दिन रहेंगे, यहां पर तो दुख है दुख। तो वो भगवान फिर भी आते हैं यहां पर, इतना सारा दुर्लभ संग है वहां पर, उसको छोड़कर यहां पर क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे एक पिताजी के घर में दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा सद्गुणी होता है, एक दुर्गुणी होता है, और दुर्गुणी बच्चा जो है ना वो शरारत करता है, गुनाह करता है, क्या कहते हैं, आतंक करता है, एक झगड़ा करता है और घर छोड़ के चला जाता है। फिर बोलता है मेरा हिस्सा दे दो मुझे, मैं जाता हूं, मेरे को आपके साथ रहना नहीं है, किसी कीमत पर आपके साथ नहीं रहूंगा, तो पापा किसका विचार करते रहते हैं हमेशा? आप बताइए, माताजी कौन सा बच्चे का विचार करते रहते हैं? जो घर में है उसका करते क्या? हाँ, घर में वाले को प्रेम, खाना पीना सब करते हैं, प्रेम से रखती है, लेकिन चिंता और चिंतन और विचार किस बालक का करती है? जो घर छोड़ के चला गया है, सोचते रहते हैं कहाँ पर होगा। वो खबर आती है कि वो दादर के रेलवे स्टेशन पे बूट पॉलिश कर रहा है, उधर ही सोता है, तो किसी को भेजते हैं, जाओ उसको समझाओ, चाचा को भेजते हैं, दोस्त को भेजते हैं, बोले आओ घर पे चले जाओ, बस हो गया अभी आपका, नहीं नहीं मुझे नहीं आना है, फिर आओ किसी को भेजते हैं, फिर खुद कभी खुद जाते हैं, फिर मना करता है। एक दिन वो लौट के आता है तो बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं कि लड़का लौट के आया। दूसरा बच्चा पूछता है, क्या पापा मैंने कुछ नहीं किया क्या? मैंने इतना कुछ बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया, हमेशा आपके साथ में रहा, कभी मेरे लिए उत्सव नहीं मनाया आपने? और वो इतना पापी गुनहगार व्यक्ति जो है वो लौट के आया तो आपने इतना फेस्टिवल मनाया उसके लिए? क्योंकि पापा का हृदय ऐसे ही होता है, जो बालक उससे जुदा हो गया है ना उसका चिंतन करते रहते वो हमेशा। तो भगवान हमारा चिंतन करते रहते हैं, हमने उनका गोलोक धाम छोड़ के, वैकुंठ धाम छोड़ के हम लोग यहाँ पर आए, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से जीने के लिए यहाँ पर आए, हमारा जीवन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपका आधिपत्य नहीं होना चाहिए, आपका नियम नहीं होना चाहिए, हमारा नियम से हमको चलना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आए शरीर धारण किया, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बद्ध हो गए हम लोग, तो हम लोगों को दोबारा बुलाने के लिए भगवान आते हैं। क्या बोलते हैं? अब लौट चले, चलो अभी बहुत हो गया, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा आदि भौतिक आदि क्लेश आदि दैविक आदि आत्मिक कष्ट कितना देर भोगोगे आप? चलो मेरे धाम में चलो, यहाँ पर सब लोग गीत गाते हैं, सब लोग डांस करते हैं, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि की भूमि है, इतना आनंदमय लीला है, प्रेममय लीला है, वहां चलो। बार बार आते हैं, संभवामी युगे युगे, एक बार नहीं आते हैं, बार बार आते रहते हैं, बार बार लगातार अनंत बार आते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसका कारण है करुणा, उनको हमारे प्रति करुणा है इसलिए वो आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जग गए हैं इस भवसागर में माया के निद्रा से, जो लोग जग गए हैं उनको भगवान के आविर्भाव के कारण कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, इसलिए हम लोग उत्सव मनाते हैं। सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ कारण है जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का, तो भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम लोग ये मनाते हैं। दूसरों को भी, हम जैसे हम जग गए हैं, थोड़ा बहुत जागृति में आ गए हैं, हमको पता चल गया है कि हम गलत गलत काम कर रहे हैं, भगवान के लिए अभी जाना चाहिए उनके धाम में भक्ति करके, तो जैसे हम जग गए हैं किसी की वजह से, हमको भी किसी को जगाने के लिए उत्सव मनाना चाहिए, वो भी कृतज्ञता है। क्योंकि भगवान का मिशन है ना ये, भगवान का मिशन है कि भगवान चाहते हैं कि सब लोग लौट के चले। तो कुछ लोग पूछते फिर ये पृथ्वी का क्या होगा, तो उसका उत्तर है यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो उसकी, है ना। अरे सब जेल खाली हो गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं, फ्लैट बना के बेच देंगे लोगों को, उसमें क्या है। अरे जेल खाली हुआ ये चिंतित चिंता का विषय नहीं है, जेल भर रहा है ये चिंता का विषय है, इज इट नॉट ट्रू? जेल खाली हो रहा है तो अच्छी बात है, जगह खाली होगी, अच्छे अच्छे कमरे बनाओ, लोगों को वहां पर रहने की व्यवस्था करो, नाम जेल चेंज करो और कहो कि शांति निवास, ऐसे बना दो उसको। तो भौतिक दुनिया में अगर लोग खाली हो जाएंगे चिंता करने की बात नहीं है, भौतिक दुनिया भर रही है चिंता की बात है, तो वो भौतिक दुनिया भर रही है उसको खाली करने के लिए भगवान आते हैं बार बार, और यहां पर आकर ऐसी लीलाओं को प्रकट करते हैं कि हम जैसे दुनिया में खोए हुए लोगों को उनके लीलाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, अट्रैक्शन, दोबारा उनकी ओर हमारा दिल मुड़े, आकर्षित हो जाए, आकृष्ट हो जाए, और हम उनकी ओर जाने का प्रयास करें, उस रास्ते पर चलने का टिकट निकालें, इसलिए वो आते हैं, इतना सुंदर लीला करते हैं। अभी देखो भगवान जब अवतार लेते हैं स्वयं, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी जितने भी आते हैं ना वो सब भगवान के कला और अंश हैं, अलग अलग प्रकार के भगवान के अवतार हैं, जैसे सागर में लहरें होती है ना वैसे भगवान के अवतार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, अनंत अवतार है भगवान के, वो सब भगवान की कला या कला के कला या विस्तार के विस्तार या अंश के अंश हैं। जैसे नरसिंह भगवान है, आते हैं एक कार्य करते हैं चले जाते हैं, मत्स्य अवतार, वेदों को बचाने के लिए आए, वेद बचाए, सत्यव्रत मुनि के सुपुर्द कर दिए चले गए, कुरुम अवतार आए, समुद्र मंथन में सहभाग दिया, वो एक कार्य पूरा किया, चले गए। नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकश्यप को वध किया, चले गए। वामन देव आए, बलि महाराज का क्या कहते हैं उसको, गर्भ हरण किया, देवताओं को राज्य वापस कर दिया, चले गए। राम भगवान आए, बहुत देर तक रहे, हजारों साल रहे, लेकिन क्या किया, मर्यादा लोगों को सिखाया कैसे मर्यादा से रहना चाहिए। एक अंश, एक एस्पेक्ट है ना जीवन का, मर्यादा, नियम, आदर्श, हर व्यक्ति को एक भाई, एक बहन, एक पिता, एक माता, एक पुत्र, एक भाई के रूप में, आदर्श रूप में कैसे रहना चाहिए, वो दिखाने के लिए उन्होंने कई हजारों साल यहां पर राज्य किया। लेकिन श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, वे जब आते हैं तो सारे 6 ऐश्वर्य, 16 गुण और 64 कलाएं, वो सब प्रकट करते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में, अनंत मात्रा में प्रकट करते हैं। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो हर प्रकार की लीलाओं का, हर ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। और विशेष बात है उनकी ये कि जब ये हर प्रकार का ऐश्वर्य वो प्रकट करते हैं ना, तो उसमें से एक हिस्सा है वृंदावन का जीवन उनका। भगवान जब आए ना अभी लास्ट कलयुग में, लास्ट कलयुग के पहले जो द्वापर युग था, इसमें भगवान आए थे। ये हमारा परम भाग्य है, 1000 बार जब द्वापर युग आता है ना, तो 1000वें द्वापर में भगवान आते हैं, 999 में भगवान नहीं आते। और 1000 जब कलयुग आते हैं तो 999 में भगवान नहीं आते हैं, लेकिन 1000वें में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं। और हमारा भाग्य क्या है कि हमारे ये चतुर्युगी में, यही कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसके पहले वाले द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे, इसे हम लोग ज्यादा भाग्यवान है, क्योंकि तो उनके आने की खुशबू अभी भी यहां बह रही है, समाप्त नहीं हुई है, ऐसा हमारा भाग्य है। तो वो जब आते हैं तो 125 साल रहे थे वो यहां पर, है ना, 125 ईयर्स, उसमें से 11 साल 52 दिन वृंदावन में रहे थे। उनका वृंदावन का जीवन जो है वो बहुत ही विशेष और स्पेशल है, क्योंकि वृंदावन के जीवन में उन्होंने चप्पल नहीं पहना, कोई ऐश्वर्य वाला वस्त्र नहीं पहना, गांव का वस्त्र पहना, वनमाला पहनी, कोई वैजयंती माला नहीं पहनी उन्होंने, कोई मुकुट नहीं पहना, मोर मुकुट पहना, खाली मोर लगा दिया सर पे। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नंगे पैर घूमे। दूसरी बड़ी बात यह है कि अपना भगवान का पद जो है ना, कि मैं भगवान हूं, वो भगवान का पद छोड़कर रहे हुए यहां पर। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है ना, कभी कभी बड़ा आदमी बनने पर उसको बहुत बोर हो जाता है, अरे कोई बनियान भी खरीदना होता तो उसको लिए मुमकिन नहीं है वो। आप लोग किसी भी दुकान में घुस सकते हैं, बनियान खरीद सकते हैं, शर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन बड़े आदमी को ऐसे मन मर्जी बनियान शर्ट खरीदने का इतना आसान नहीं है, इतनी जनता सिक्योरिटी, इतना इतना सुख नहीं उसको कि भाई एक अगरबत्ती का लाइटर खरीदना है 10 रुपए का, वो नहीं खरीद सकता है। तो कभी कभी उसको लगता है कि थोड़ा दिन ना ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर कोई जानता ही नहीं मुझे, सब लोग अनजान हो मुझसे, ताकि मैं सामान्य आदमी की तरह रहूं, जाके फल का पेड़ चीकू काट के खाऊं, किसी पेड़ का आम काट के खाऊं, कभी नदी में कूदूं, स्विमिंग करूं, कभी जाके केला खरीद के लेके आऊं और आराम से रहूं, कोई जानता नहीं मुझे वहां पर, ऐसा कुछ समय के लिए जीना, जीवन जीना चाहता है वो। इसलिए इस जगह जाता है छुट्टी मनाने, जहां पर कोई, जैसे क्रिकेटर ना, क्रिकेटर वो उस देश में जाएगा खेलने के लिए जहां पर कोई छुट्टी मनाने के लिए जहां पर कोई क्रिकेट जानता ही नहीं है और खेलता भी नहीं, ताकि कोई उसके पीछे भागेगा नहीं VIP करके। तो वैसे भगवान भी सब जगह भगवान है, सारे देश में, सारे वैकुंठ में, सारे ब्रह्मांड में, विशिष्ट ब्रह्मांडों में, विशिष्ट वैकुंठों में, सब जगह वो भगवान है। तो वो वृंदावन में आते हैं, आते तो एकदम सिंपल सा बालक बनकर आते हैं, किसी का पुत्र बनकर आते हैं, किसी का फ्रेंड बनकर आते हैं, किसी का प्रेम करने वाले बनकर आते हैं, सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए वृंदावन में भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान के साथ गला में गला डाल के खेल सकते हैं, भगवान के कंधे पर भी चढ़ सकते हैं, भगवान को गेम में हरा सकते हैं खेल में, और पनिशमेंट के रूप में उनके कंधे पर चढ़कर एक राउंड ले सकते हैं, ऐसा भगवान खेल खेलते हैं। गुल्ली डंडा खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, गेंद पकड़ते हुए जमीन से नदी में कूदते हैं, पेड़ की शाखा से जमुना के जल में कूदते हैं, गेंद के लिए फाइट करते हैं, तेरा गेंद मेरा गेंद, चिना जपटी करते हैं, आपके टिफिन का खाना छीन के खाएंगे, उनके टिफिन का खाना कोई छीन के खाएगा, उनके मुंह से निकाल के खाएगा, हाँ ये भी हो सकता है, ये सब होता है। तो ऐसा विशिष्ट आनंद लेने के लिए भगवान आते हैं। तो विशेष रूप से कवि कर्णापुर बताते हैं कि भगवान तीन कारण कारण के लिए कृष्ण के रूप में आते हैं। वो ये है कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे भक्त हैं, मतलब भक्त नहीं है वो, योगी लोग हैं, योगी लोग परम ज्ञानी हैं, पापी बिल्कुल नहीं है, पाप बिल्कुल छोड़ दिया है उन्होंने, विरक्त हो गए हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है और कहीं पर बैठकर योग कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं विरक्त होकर। तो ऐसी योगी जनों को, जिसको आत्माराम मुनि कहा गया है, आत्माराम मुनि मतलब क्या है, अपने में मस्त है वो, आत्माराम, सेल्फ सेटिस्फाइड है। लेकिन ऐसे योगियों को प्रेम का, आनंद का स्वाद पता नहीं है, उनके को शांति का अनुभव है, मुक्ति का अनुभव है, त्रिगुण के परे जा चुके हैं, लेकिन प्रेम आस्वादन उनके पास नहीं है। तो ऐसे आत्माराम मुनियों को प्रेम लीलाओं का आस्वादन करके प्रेम भक्ति में आकृष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। दूसरा कारण यह है कि उनके बहुत सारे भक्त भी हैं, मैंने कहा ना आपको तीन प्रकार के भक्त हैं, एक नित्य सिद्ध हैं, वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके आते हैं, कभी माता बनकर आते हैं, कभी कुछ बनकर आते हैं, कभी राम आएंगे तो कौशल्या बनकर आते हैं, कभी कृष्ण आएंगे तो यशोदा बनकर आते हैं, कि वामन देव के लिए अदिति बनकर आते हैं ना, वही व्यक्ति है वो, लेकिन अलग अलग रोल में अलग अलग भाव में आते हैं, लेकिन व्यक्ति वही है वो। ऐसे भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, कोई फ्रेंडशिप में है, कोई शांत रस में है, कोई सेवक भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, माता पिता के भाव में है, कोई प्रियकर प्रेयसी के भाव में है, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य। तो वो भक्तों को प्रेममयी मधुर लीलाओं का प्रदर्शन करके उनको रिझाने के लिए वो आते हैं, स्वयं भी रिझना चाहते हैं, उनको भी रिझाना चाहते हैं, और एक दिव्य प्रेम का वातावरण यहाँ पर निर्माण करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम जैसे बद्ध लोग उसको देखें और आकर्षित हो जाएं। एक ही साथ तीन तीर मार रहे हैं, स्वयं को भी सुखी कर रहे हैं, उन भक्तों को भी उनके रस में आस्वादन दे रहे हैं, और ये दो सीन निर्माण कर रहे हैं, उसे हम जैसे लोग आकर्षित हो रहे हैं। और तीसरा कारण जो है वो सेकेंडरी कारण है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है पृथ्वी का पाप रूपी दैत्य भार कम करने के लिए, क्योंकि तो यहां पर इतने राक्षस होते हैं ना दुनिया में, इतना पाप करते हैं कि पृथ्वी उसका भार जो है ना वो झेल नहीं पाती है, पृथ्वी माता जो है ना वो दो भार को सहन नहीं कर सकती, उसका मूल जो अस्तित्व है पृथ्वी का वो केवल भार ढोने के लिए है ना, कुली कैसा होता, कुली होता है ट्रेन में, कैसा होता है ना प्लेटफॉर्म पे, कैसा होता है उसका काम क्या है, केवल वजन ढोना है उसका काम, और कोई काम ही नहीं है, वजन ही ढोना है, दिन भर रात भर जो करना है, जितना घंटा काम करना है केवल वजन ही लेना है बस। तो पृथ्वी का क्या धरा नाम है, धरा, वो केवल धारण ही करती रहती है, मतलब क्या पेड़ है, पर्वत है, बिल्डिंग है, क्या क्या मैंशन है, प्रासाद है, महल है, यहाँ पर गाड़ियां है, पत्थर है, क्या क्या नहीं है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कितना भी वजन हो जाए। जैसे 9 महीने की गर्भवती माता है, आप देख रहे हैं उसको चलने को नहीं हो रहा है, लेकिन उसको वो वजन का इतना दुख नहीं होता है, उसको आनंद होता है, वाह अभी बच्चा होने वाला है, इतना वजन पेट पे लेकर घूम रही है वो, 9 महीने तक लेके घूमती है, फिर भी कभी भी उसका उस वजन उसके लिए बोझ नहीं बनता है, अंतर है ना उसके अंदर, वजन और बोझ के अंदर। जैसे एक गर्भवती माता को अपने बालक का बोझ नहीं होता है, वैसे पृथ्वी माता को दुनिया के किसी चीज का बोझ नहीं होता है, लेकिन दो चीजें हैं उसका, उसको बोझ होता है, बोझ लगता है, बोझ अनुभूति होने लगती है, वो क्या है, असत्य और पाप। झूठ का जीवन कोई जीने लगता है तो पृथ्वी को वो सहन नहीं होता है, उसका बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उसको, और दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का पाप जो है वो उसको नहीं सहन होता है। तो पृथ्वी माता को ऐसे असत्य और पाप का बोझ से मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि पृथ्वी को दैत्यों के, असत्य के, पाप के भारों से मुक्त करने के लिए उनको खुद के आने की कोई जरूरत नहीं, परास्त शक्तिर विविध ही वह सूयते, भगवान के पास इतनी अनंत शक्तियां हैं, वो किसी भी शक्ति को भेजकर इसका नाश कर सकते हैं। बाय द वे मैं आया ही हूं तो ये भी कर लेता हूं, बोलते ना कभी तुम दिल्ली गए हो तो जाके वो चांदनी चौक से वो भी लेके आना, किसी काम से गए हो तो, वो जरूरी नहीं है कोई भी लाके, कुरियर से या अमेजोन से आप ऑनलाइन ला मंगा सकते हो, लेकिन आप जा ही रहे हो तो खुद खरीद के लेके आओ, ऐसा काम है वो, जिस प्रकार से भगवान राक्षसों का वध करते हैं। और ये भी कहा गया कि जब भगवान आते हैं और राक्षस का वध करते हैं तो खुद नहीं करते वो राक्षस का वध, उनके अंदर जो विष्णु का ऐश्वर्य अंश है वो राक्षस का वध करते हैं, वो तो केवल लीला करते रहते हैं। अगेन लीला और कर्म में अंतर है, हम लोग कर्म करते हैं, भगवान लीला करते हैं। हम लोग कर्म करते हैं उसका फल होता है, फल में हम बंध जाते हैं, सुख और दुख का अनुभव करते हैं, और भगवान लीला करते हैं। और भगवान की लीला करने से ना वो खुद उस लीला में लिप्त है, लेकिन वो लीला सुनने से और लीला देखने से हम लोग हमारे कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं। देखिए कितना पावरफुल चीज है, खुद तो लीला के कोई फल नहीं है और लीला के फल में बद्ध नहीं होते हैं, कोई आसक्ति नहीं है उनको, लेकिन वो लीला को सुनने से देखने से क्या होता है, जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान का कार्य है, लेकिन भगवान केवल लीला करने में मग्न रहते हैं, और खास करके प्रेम लीला। तो ये भगवान का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। कौन है जिसकी जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं हम लोग, कौन व्यक्ति है वो? वो त्रिलोक के स्वामी नहीं है केवल, त्रिलोक के स्वामी तो ब्रह्मांड के स्वामी है ना, वो मतलब एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो भौतिक दुनिया है, उसके परे वैकुंठ जगत है, उसके परे विशिष्ट वैकुंठ है, उसके परे गौलोक धाम है, ये सबके मालिक है वो, यानी कि सृजन के मालिक है, निर्माण के मालिक है वो। ऐसे उनका अबाधित क्या कहते हैं श्रेष्ठत्व है, ऐसे परम स्थिति है उनकी। वे भगवान यहां पर आ रहे हैं जो 64 गुणों से संपृक्त हैं, एक गुण नहीं उनके अंदर, 64 गुण जो है वो अनंत मात्रा में उनके अंदर छाए हुए हैं, कोई तुलना नहीं कर सकता उनके साथ में। और ऐसा भी है कि हम जो जीव लोग हैं, हम लोग हमारे अंदर भगवान के 50% गुण हैं, लेकिन 50% गुण जो भगवान के हैं, 50 गुण सॉरी, 64 में से 50 गुण हमारे अंदर है भगवान के, लेकिन वो अणु मात्र में है, अणु मात्र, छोटे छोटे मात्रा में है। वो 50 गुण परिपूर्ण मात्रा में ब्रह्मा जी के अंदर है, परफेक्ट एकदम। उसके आगे वाले 5 गुण यानी 55 गुण भगवान शिव जी में है, और उसके आगे वाले 5 गुण यानी 60 गुण जो है, जितने भगवान के विष्णु के अवतार हैं उनके अंदर 60 गुण हैं। आप राम भगवान कहिए, नरसिंह भगवान कहिए, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वामन अवतार, मुकुंद, जैसे भी भगवान के त्रिविक्रम जितने भी नाम हैं, जितने भी अवतार, उनके अंदर 60 गुण हैं। लेकिन आगे वाले 4 गुण हैं वो बहुत लोगों में है, लेकिन आगे वाले 4 गुण परिपूर्ण अनंत मात्रा में केवल भगवान कृष्ण में है। और वो 4 गुण कौन से हैं? एक है उनका वेणु माधुर्य, वो जो वेणु बजाते हैं ना, वैसे वेणु ग्वाल बाल बजाते हैं, बलराम भी बजाते हैं, लेकिन वैसी वेणु जो कृष्ण बजाते हैं वो कोई नहीं बजा सकता है। 8 प्रकार के उसमें स्वर है उनके, एक एक स्वर से 8 8 परिणाम होते हैं उसके, अलग अलग विक्षिप्त परिणाम होते हैं। जैसे कि छठवा जो बजाएंगे ना तो पत्थर पिघल जाते हैं, इस पूरे दुनिया में पत्थर पिघलने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, एनीबडी नोज एनी प्रोसीजर, जो पत्थर पिघल सकता है, लेकिन भगवान जब अपने वेणु में छठवा स्वर बजाते हैं तो पत्थर पिघलने लगता है, गोवर्धन पिघलने लगता है, नंदीश्वर ब्रह्माचल पिघलने लगता है, चरण चिन्ह निर्माण होते हैं। दूसरा स्वर बजाते हैं तो नदियां उल्टी बहने लगती है, एक तो रुक जाती है या तो गोल गोल फिरती है, भवरा निर्माण करती है नदी, या तो उल्टी बहती है। चंद्र और सूर्य अपने कक्षा में उल्टा प्रवास करने लगते हैं दूसरा स्वर बजाने से। ऐसे हर एक स्वर का अपना अपना परिणाम है, वैसा वेणु बजाने की कला जो है वो केवल श्री कृष्ण में है। दूसरा है लीला माधुर्य, वे जो लीला करते हैं वैसे लीला कोई नहीं कर सकता है। हम देखते नरसिंह भगवान आए, खंभा फोड़कर हिरण्यकश्यप को फाड़ के चले गए, लेकिन अनंत गोपियों के साथ अनंत रूप में वो डांस किया क्या उन्होंने, या माखन चोरी किया क्या उन्होंने, गोवर्धन को धारण किया क्या उन्होंने? ऐसा अद्भुत कार्य केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, एक एक काम करके चले जाते हैं वो, लेकिन अनंत प्रकार के अनंत कार्य, अनंत मात्रा में प्रभावी कार्य को है वो केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं। उनके जैसी लीला करने का सामर्थ्य और किसी अवतार में भी नहीं है, ऐसे अनोखे लीलाधार लीलाधर भगवान है वो। दूसरा हो गया लीला माधुर्य, तीसरा क्या है? प्रेम माधुर्य। जैसा प्रेम, करुणामय प्रेम भगवान अपने भक्त पर करते हैं, श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त पर करते हैं, वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। सब भगवान अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं, सब भगवान के अपने अपने भक्त हैं। नरसिंह भगवान का एक अपना भक्तों का समुदाय है, राम भगवान का अपना समुदाय है, उनके उनके लोक में रहते हैं वो साथ में उनके। मत्स्य अवतार का एक लोक है, वहां पर उनके भक्त रहते हैं। समुद्र कन्याएं उनकी पत्नियां हैं, समुद्र के जीव उनके भक्त हैं, वामन अवतार के अपने अपने भक्त हैं, हर एक भगवान के अपने भक्तों का अनंत समुदाय है। लेकिन जैसे कृष्ण भगवान अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं, वैसे प्रेम कोई भी अवतार भगवान के नहीं कर सकते। तो कितने हो गए? चौथा कौन सा है बताइए? हाँ, रूप माधुर्य। ये रूप जो भगवान का है, कृष्ण का, बाकी सारे भगवान के अवतार भी सुंदर है, ऐसा नहीं है। वो हाफ मैन हाफ लायन भी बहुत सुंदर है। नरसिंह भगवान राक्षसों को दिल में धड़की भर रही है उनको देखकर, लेकिन प्रहलाद के प्रेम के फवारे फूट रहे हैं। सुंदर है बहुत भगवान। मत्स्य बनकर आए समुद्र कन्या आकर्षित हो गई, वामन को देखकर बहुत सारे लोग आकर्षित हो गए, राम को देखकर तो कितने सारे लोग आकर्षित हो गए। सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कृष्ण का सौंदर्य फिर भी उससे भी ज्यादा बड़ा है। अरे वो अपने ही सौंदर्य को खंबे के रत्नों से भरे हुए आईने में अपने आप को देखकर बेहोश होकर गिर जाते थे। जब जमुना नदी में गेंद गिरती थी तो गेंद निकालने के लिए जब झुकते थे तो अपने ही रूप को देखकर बेहोश होकर जमुना जी में गिर जाते थे। और 7 दिन 7 रात उन्होंने जब गोवर्धन को उठाया, 7 दिन 7 रात लगातार खाना पीना सोना कोई वे कुछ नहीं उसके अंदर। तो लोग पूछते हैं कभी कि 7 दिन 7 रात वो तो अपने भगवान है मजे में खड़े हैं, लेकिन बाकी किसी लोगों ने कभी पानी नहीं मांगा, खाना नहीं मांगा, उनको नींद नहीं आई, कोई लघु शंका बड़ी शंका का वेग नहीं आया, क्यों? ऐसा कारण क्या है उसका? कहते हैं कि एक ही तो भगवान यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, स्वयं अपने आप में ऐसे खड़े रहेंगे तो भी सुंदर है वो। प्रेमान जन भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेशु विलोकयन्ति। ऐसे सुंदर भगवान को साधु लोग प्रेम का अंजन लगाकर हृदय के आंगन में हमेशा निहारते रहते हैं एक टक एक लगन से। और वो जब ऐसे 3 जगह मुड़ जाते हैं और मुरली लेकर खड़े होते हैं तो और आकर्षित हो जाते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है? एक हाथ में मुरली है और एक हाथ में गोवर्धन है। कहते ऐसा अद्भुत रूप तो कभी किसी ने देखा नहीं था आज तक, उनका भी नहीं देखा था। तो वो जो रूप माधुरी थी वो इतनी अनंत थी, इतनी प्रगाढ़ थी, इतनी अमर्याद थी कि लोग जो खड़े थे वो उनको देखते ही रह गए। 7 दिन और 7 रात उनके रूप की अनन्य माधुरी को पीते रहे आंखों से, और उनकी तृष्णा समाप्त नहीं हो रही थी, संतुष्ट नहीं हो रहे थे वो। भगवान अगर 700 दिन भी खड़े रहते ना तो भी वो उनको देखते रहते। अब बोलते नहीं कितने दिन हो गए अभी, बस करो अभी भूख लग रही है, ऐसे नहीं बोलते। कहीं भागवत में ऐसा वर्णन नहीं, कहीं टीकाकारों ने वर्णन नहीं किया है कि सभी ग्वाल बालों को भूख लग रही थी, भगवान का हाथ दुख रहा था और सब लोगों की आंखें झपकी मार रही थी, वो कभी सोने को मिलेगा, कुछ लोग गिर रहे थे सो रहे थे, बच्चे लोग गोद में सोए सो रहे थे। होता है ना कभी कभी प्रवचन चल रहा है, माताएं पिताएं सुन रहे हैं लेकिन बच्चे गोद में आराम से सो रहे हैं, कोई नहीं सो रहा था, पंछी भी नहीं सो रहा था, ना गाय सो रही, ना बछड़ा सो रहा है, ना तोता सो रहा है, ना मैना सो रही है, सब लोग देख रहे हैं, बंदर देख रहे हैं। ऐसे कैसे देख रहे हैं? मराठी बोलते ना आ वासुन, ऐसा मुंह में आ से देख रहे हैं। गाय की सेफ्टी ऊपर है, कान ऊपर है, ऐसे आंख ऐसे, पापड़ी भी वो चिपका नहीं रही है, आंसू भी टपक रहे हैं प्रेम से, ऐसे निहार रहे हैं 7 दिन 7 रात तक। कितने घंटे होते हैं, कितने पल होते हैं, गिनो आप जरा, 7 दिन 7 रात में। उनको लगा नहीं कभी ये दृश्य समाप्त होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा सौंदर्य है उसके अंदर, हर क्षण नया सौंदर्य है, हर दिन हर घंटे हर मिनट में नया सौंदर्य, किसी को बोर होने का सवाल ही नहीं उठता। तो यह है रूप माधुरी। तो ये 64 गुण पूरे हो गए भगवान के। ऐसे श्री कृष्ण भगवान जन्म ले रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। आप हम लोग सुन रहे हैं कि वो माखन चोरी करते हैं, आप लोग अच्छा बालक है, बहुत अट्रैक्टिव बालक है, नहीं वो बालक बनकर आ रहे हैं हमारे लिए आनंद लेने के लिए। वो जिसने एक मुक्का मारकर कंस को खत्म कर दिया, जो कंस ने अपने जीवन काल में दुनिया भर के जितने राक्षस थे सबको अपने वश में कर दिया था, इमेजिन दिग्विजय कंस, जिसने कोलिया पेड़ को हाथी को एक हाथ से उठाकर ऐसा फेंका था कि वापस जरासंध के अखाड़े में जाके गिर गया था वो कोलिया पेड़ हाथी। इतना पावरफुल था वो कंस को कृष्ण ने केवल एक को मुक्का मार के समाप्त कर दिया। आप समझ सकते हो, कभी कभी क्या है ना, अभी हम क्या बच्चे लोग पढ़ते हैं कि हाँ वो कंस के अखाड़े में गए और खींचा उसको, कंस से प्रतिकार भी नहीं किया, तलवार को उठाया, तलवार गिर गया हाथ से, डर के मारे उसको खींच लिया उन्होंने, नीचे लिया, घसीटा, एक मुक्का मारा, खत्म हो गया वो। तो क्या बड़ी बात है, जिसने विरोध ही नहीं किया, युद्ध ही नहीं किया, लड़ाई नहीं हुई, तो क्या बड़ी बात है, होगा डर पर हुआ शायद वो, लेकिन उसका इतिहास पढ़ो गर्ग संहिता में, कई चैप्टर दिए हैं कंस के अति पराक्रम के, दिग्विजय के पराक्रम के वर्णन किए गए हैं। कौन था कंस? दुनिया के सारे राक्षसों को नौकर बना के रखा था उसने, उसके इशारे पे नाचते थे, उसके इशारे पे जान देते थे, मथुरा में जाकर, मथुरा से वृंदावन जाकर जान की आहुति देते थे। ऐसा कंस को इस कृष्ण ने एक मुक्का मारकर समाप्त कर दिया, कितनी शक्ति होगी उनके अंदर बताओ। तो वे भगवान आ रहे हैं, वे भगवान आकर हमको यहां पर उनके जन्म का अवतार लेने का आविर्भाव का लाभ ले रहे हैं। इसलिए जन्माष्टमी का अर्थ समझना बहुत जरूरी है कि हम परात्पर गौलोकेश्वर दिव्य भगवान का आविर्भाव का उत्सव मना रहे हैं, जिनके केवल एक दृष्टि मात्र से हमारा सारा पाप नष्ट हो सकते हैं, जिनके केवल एक कृपा दृष्टि से हमारे हृदय के अंदर प्रेम की ज्योति जल सकती है, जिनकी इच्छा मात्र से हमें गौलोक में प्रवेश मिल सकता है। ऐसे परत अनंत शक्ति वाले भगवान जो है एक सामान्य व्यक्ति बनकर, हमारे प्रिय सुहृद बनकर अवतार ले रहे हैं, और क्या नहीं कर रहे हमारे लिए वो। हम लोग उनको नहीं मानते हैं, उनका भजन नहीं करते हैं, उनको विश्वास नहीं रखते हैं, उनकी घृणा करते हैं, उनके लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऐसा करने के बाद भी वो हमको खाना दे रहे हैं, पीना दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, शरीर का भोग दे रहे हैं, भोग के साधन इकट्ठा कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। कितना प्रेम होगा उनको। जो व्यक्ति उनका द्वेष करता है, उनका स्वामित्व स्वीकार नहीं करता है, उनका आधिपत्य को ठुकरा देता है, जिनको ठुकरा कर यहाँ अलग जीने के लिए आता है, उसको भी खिला रहे वो। जंगल में हाथी कितने घूमते हैं, इतना खाते हैं, टनों में खाना खाते हैं, उनको भी खाना खिला रहे हैं। वो व्यक्ति का जन्मदिन है ये जो मनाने जा रहे हैं। इसलिए इत्मीनान से तैयार हो जाइए स्वागत करने के लिए। तो अभी इनकी लीला का ऐसा गुणधर्म है कि जो भी सुनता है वो कर्मों के फलों के परे चला जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके दुख नष्ट हो जाते हैं, उसका भाग्य का उदय होता है, उसके सारे पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। ऐसी ये लीलाएं हैं। एक भागवतम में ना दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी करके भाग है, भगवान के रास लीलाओं का वर्णन 5 अध्याय में किया गया। उस 5 अध्याय के अंत में एक श्लोक है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि ये भगवान की लीलाएं सच लीलाएं हैं, ये मत समझना कि काल्पनिक है, या उस पर प्रश्न उत्पन्न मत करना ऐसा कैसे किया भगवान ने, ये क्या भगवान है क्या, बीच रात में किसी की औरतों को बुला रहे फोन करके, मतलब मुरली बजा के और रात में उनके साथ डांस कर रहे हैं, उनके पति लोग घर पे सोए हुए हैं, ये कैसे भगवान है, ऐसे प्रश्न मत करना उनके लिए। तो इस श्लोक में लिखा है, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, लोगों को जानते हैं ना, सुखदेव जी महाराज जहां पर बैठकर ये भागवत की कथा कर रहे हैं वो परिषद महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन बाकी सब लोग A to Z शुद्ध भक्त नहीं है। बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्माराम मुनि है, कुछ लोग योगी है, ध्यानी है, कर्मी है, तपी है, सब लोग बैठे हुए हैं। उनको पता है कि किस किस के मन में सभा में संदेह हो सकता है, ऐसे कैसे, हाउ इज दिस लाइक दिस, क्योंकि श्रद्धा नहीं ना, द्वेष है मन में, ऐसा कैसे है? तो उनके लिए बता रहे, वो क्या बता रहे, ध्यान से सुनिए, ये बता रहे हैं कि ये सारी लीलाएं वास्तव लीलाएं हैं, अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट है, अमृत से अधिक स्वादिष्ट है, जीवों को मुक्त करने वाली है। और जो व्यक्ति श्रद्धा से और भक्ति भाव से इसको श्रवण करेगा, उसका काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर सब नष्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से मोह को नष्ट करेगा और हृदय में प्रेम का उदय करेगा। ऐसी लीलाओं में शक्ति है। इसलिए जब हम कोई भगवान की लीला सुनते हैं तो ऐसा आचार्य बताते हैं कि वो बड़े ही आदर भाव से विथ ऑ एंड रेवरेंस पूरे सम्मान के साथ ऐश्वर्य आदर का होना चाहिए, उस ऐश्वर्य संपन्न आदर से उनका लीला को श्रवण करना चाहिए। ये नहीं कि हम लीला में अपने आप को भगवान जैसे समझ के सुनना चाहिए। एक ही गाइडलाइन है, श्रद्धा से प्रेम से और आदरता से आदर भाव से इसको सुनना चाहिए। तो वो सिंपल सी लीला है, क्या लीला है, मणिमय आंगन में, नंद के आंगन में, नंद महल के आंगन में जो मणिमय है, कृष्ण और बलराम जी खेल रहे हैं, उनके पैर में नुपुर है। क्या नुपुर का मतलब है, पायल पेंजण, वो चल रहे हैं तो उस नुपुरों की आवाज आ रही है। हाँ, सब लोग ध्यान से चिंतन करना इसके ऊपर, बहुत छोटी सी लीला है, कोई बड़ी लीला नहीं है। नंद भवन है बहुत भव्य, उसके आंगन वो सब मणिमय है, पूरा मणिकंचनमय है। उसके अंदर कृष्ण बलराम दोनों मोर पंख पहना दिया है, उनको पैर में पायल लगा दिया है और वो छोटे से बालक है, अभी इतना अच्छा चलने को नहीं आ रहा है उनको, ऐसे 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 चल रहे इधर उधर से, लेकिन जैसे चल रहे हैं ना तो नुपुर की आवाज आ रही है। और आपने भी अनुभव किया होगा, जब आपने कभी छुम छुम बजने वाले पायल बच्चों के पैर में पहनाते हैं ना, तो बच्चे भी उसको चलने में बड़ा आनंद लेते हैं, छुम छुम उनको आनंद आता है तो वो सुनकर बहुत मजा लेते हैं। वैसे भगवान भी अपने ही पायल से आने वाली आवाज से रीझ रहे हैं और बार बार पैर अपने चरण कमल जो है वो डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आवाज भी आ जाए, वो सुने उसको और अपने आप को रिझा रहे हैं दोनों भैया। और चलते 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 वो सोनी आवाज सुनते 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 मोहित होकर आगे 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 जा रहे हैं तो एकदम वो महल के गेट तक पहुंच जाते हैं। तो वहां महल के गेट में क्या हो रहा है, एक आदमी है बहुत लंबा सा, अंगरखा पहन के आया हुआ है, लेकिन उसकी पीठ है उस तरफ, तो इनको लग रहा है कि हमारे बाबा है नंद बाबा, तो उसकी ओर जा रहे हैं, उसका अंगरखा पकड़ रहे हैं। लेकिन अंगरखा पकड़ने के बाद जब खींचते हैं, उसका आधार लेकर खड़े रहते हैं, तो जैसे खींचते हैं तो वो आदमी जो है ना वो पीछे मुड़कर देखता है ना, समझो आप अभी पीछे मुड़कर खड़े हैं, आपका धोती किसने खींचा, आप देखेंगे ना कौन है बालक, आप मेरा है कि किसी और का है। तो वैसे वो आदमी मुड़के देखता है, तब ये जान जाते हैं कि हमारे नंद बाबा नहीं है, तो वो डर जाते हैं और भागने लगते हैं। और जैसे भागते हैं ना छुम 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 आवाज आती है, तो डर भी रहे हैं उससे और आवाज से भी रिझ रहे हैं और भाग के अपने बाबा की गोद में जा रहे हैं। आचार्य गण जो है ना इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, मन के पटल पे दृष्टांत हो रहा है उनको कि मणिमय नंद के आंगन में कृष्ण बलराम दोनों भैया जो है वो खेल रहे हैं, यशोदा माई देख रही हैं, रोहिणी मैया देख रही हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनका सुंदर रूप, उनके शरीर से निकलने वाली आभा, उनके नुपुर की निकलने वाली ध्वनि, माँ के लिए तो बच्चे के पैर के नुपुर की ध्वनि है, लेकिन देवता लोग क्या देख रहे हैं, इसी ध्वनि से वेद निर्माण हो रहे हैं, सारा ज्ञान का निर्माण हो रहा है। सोच सकते हैं आप, सारे कर्ण के विषय का सार है वो भगवान के नुपुर की आवाज, भगवान के बंसी की आवाज। यही बालकों को चंदन अगुरु लगाकर उन्होंने भेजा है, फिर वो गौशाला में जाते हैं और गौशाला में जाते हैं तो छोटे छोटे बछड़े वहां पर है ना, बड़े बैलों का अलग होता है स्थान, बड़े गायों का स्थान अलग होता है, बछड़े अलग रहते हैं, और कभी कभी काली गाय अलग होती है, गोरी गाय अलग होती है, भूरी गाय अलग होती है, डब्बे वाले अलग होती है, तिलकनी अलग होती है, ऐसे ऐसे झुंड होते हैं। तो ये जो है ना ये बछड़े वाले गौशाला में जा रहे हैं, सब जगह बछड़ों ने गोबर और गोमूत्र का मिश्रण खड़ा करके रखा हुआ है। तो क्या हो रहा है, जा रहे अंदर चल चल के, फिर क्या हो रहा है, फिसल के गिर जाते हैं, पेट के बल गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं, जाते हैं और छोटे से बछड़े का पूंछ पकड़ लेते हैं और उस पूंछ को पकड़कर ऐसे खड़े हो जाते हैं। जब बैल के बछड़ों के पूंछ को पकड़कर वो जब खींच जाते हैं ना पूंछ, तो जो बछड़ा है वो बिथर जाता है, उसको लगता है कुछ हो रहा है तो भागने लगता है। तो ये लोग दोनों ही बछड़े के, बछिया और बछड़े के पीछे पकड़ के खड़े हैं, छोड़ते नहीं उसको, तो क्या होता है गिर जाते हैं। मैंने कहा ना गिर जाते हैं, पेट के बल गिर जाते हैं। और वहां पर नीचे जमीन पर क्या है, बहुत सुंदर चिकना चिकना गोबर और गोमूत्र का अच्छा एक मिश्रण है, बहुत स्केटिंग करने के लिए बहुत पर्याप्त अच्छा एकदम। तो पूरे गौशाला में बछड़े भाग रहे जिनकी पूंछ इन्होंने पकड़ी हुई है, वो पूरे गौशाला में इनका पेट के बल पर स्केटिंग हो रहा है। और रोहिणी मैया बुला रही है, यशोदा दीदी जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, देखो 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 क्या हो रहा है। वो वर्णन नहीं कर सकती है क्या हो रहा है, उसको तुम खुद आके देखो। तो खुद आके देख रही है और इनके फूले नहीं समा रहे हैं, आंखों से अश्रु आ रहे हैं प्रेम से। दोनों पूरे गौशाला में घूम रहे हैं पेट के बल पर, बीच में हाथ छोड़ देते हैं तो बछड़े भाग जाते हैं, फिर उनको उठने को नहीं हो रहा है क्योंकि सब चकना है ना पूरा। तो मैया जाके उनको उठा रही है, गोबर से गोमूत्र के मिश्रण से लदे हुए बालकों को गोद में लगा रहे हैं। उनके वस्त्र भी गोमूत्र और गोबर के मिश्रण से दूषित तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन लग रहा है उनके वस्त्रों को, उसकी खुशबू आ रही है। तो चूम रहे हैं उनका मुखमल, बार बार चूम रहे हैं तो उनका नीला और सफेद मुखमल जो है लाल हो रहा है, रक्त के समान, बिंब के समान, बिंब फल के समान। उनको चुंबन लेने से समाधान नहीं हो रहा है, अनंत बार चूम रही है अपने बालकों के मुखों को और फिर स्तनपान करा रही है। स्तनपान कराने समय अपने बालकों को दुग्ध दूध दुग्धपान करा रही है, लेकिन बालक उनको दुग्धपान करके अनंत आनंद का अनुभव दे रहे हैं। ऐसा वात्सल्य की संतुष्टि किसी माता को नहीं हो सकती है, ऐसा अनंत समाधान संतुष्टि आनंद प्रेम भगवान रोहिणी माता को और यशोदा माई को दे रहे हैं। ऐसे ही उनकी लीलाएं हैं। एक बार ऐसे ही वो आंगन में ऐसे रेंग रहे थे, तो आप जानते हैं ना बच्चों को ना सीढ़ियां उतरने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, आप जानते हैं, आपने कभी अनुभव किया है? थोड़े बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको सीढ़ी उतरने चढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत कोशिश करते रहते चढ़ने उतरने में। तो श्री कृष्ण भगवान सबसे पहली बार जब सीढ़ी के पास जाते हैं हिम्मत करके प्रयास करके, तो कहते हैं कि भगवान का बालक रूप में जो पेट था ना थोड़ा सा बड़ा था, हमेशा मिठाई खाना संदेश खाना वगैरह वगैरह, ये बालक को बिठा लो नीचे, सिट डाउन प्लीज। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा पेट उनका बड़ा है, तो जैसे ही वो पहली सीढ़ी उतरने का प्रयास करते हैं तो उनका पेट पहली सीढ़ी पे लटकता है और उनके पैर दूसरे सीढ़ी तक पहुंचने जैसे लंबे नहीं है। तो अभी दृश्य कैसा है? दृश्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान बालक रूप में उनका पेट पहली सीढ़ी पे अटका हुआ है और ऐसे लटक रहे हो, ऐसे 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 वो देख रहे हैं, अभी क्या करूं मैं, आगे गिरूं कि पीछे गिरूं उनको पता नहीं है, भ्रमित हो गए वो। माता पिता ऊपर से देख रहे हैं, नारद मुनि वहां से आते हैं उस समय और देख रहे हैं, अरे हमारे पर ब्रह्म परात पर गोलोकेश्वर भगवान देखो बालक बनकर कैसे लटक रहे हैं, और जोर जोर से हंसने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं। पहले दुख से आनंद से हंसते हैं, आनंद से अश्रु बहते हैं, फिर दुख से रोने लगते हैं, अरे अचानक क्या हो गया, किसकी याद कर रहे हैं, अरे देखो ये परात पर गोलोकेश्वर भगवान जो है यहाँ पर बालक बनकर नंद के आंगन में इतना आनंद दे रहे हैं, और हमारे जो योगी जन है वो जंगल में सब विरक्ति में त्याग करके ध्यान लगा रहे हैं, उनको पता नहीं देखो कितना सरल है भगवान हमारे, उतना ध्यान करके विरक्ति करके पकड़ने की जरूरत नहीं है, प्रेम भक्ति से उनको पकड़ सकते हैं ना। सत्यवत मुनि क्या कहते हैं, सत्यवत मुनि कहते हैं अपने दामोदर अष्टकम में कि ये प्रेम लीलाओं के माध्यम से भगवान योगी जनों को बता रहे हैं कि इतना तपस्या ध्यान त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम करने से मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको वो योगियों की तपियों की ध्यानियों की विरक्तियों की वो दया आ रही है, वो रो रहे नारद मुनि। ऐसा नंदगांव का ब्रज का आनंद है, ऐसा दिव्य आनंद जो है अगणित आनंद अमर्याद आनंद जो है श्री कृष्ण भगवान अपने माता पिता को देते हैं। कई मुनिजन लिखते हैं भगवान के भक्त वैष्णवगण कि ऐसा इस ब्रजवासियों ने क्या पुण्य किया था जिसकी वजह से भगवान उनके दोस्त बनकर रहे, पुत्र बनकर रहे, प्रेयसी बनकर रहे। एक आपको मैं कथा सुनाता हूं। जब भगवान ने अगासुर को मारा तो अगासुर को मारकर फिर सब लोग थक गए, फिर पेट से बाहर आ गए, भगवान ने उनको जीवित कर दिया। फिर जमुना किनारे गए और जमुना किनारे भी सब लोग भूख लग गई तो उन्हें स्नान किया, फिर भूख लग गई, बैठ गए कमलाकार बैठ गए, सबके कमल के बीच में भगवान बैठे हुए हैं, उसके बाजू में बलराम जी बैठे हुए हैं, उसके बाद अष्ट सखा बैठे हुए हैं और बाकी सारे कमर के पंखुड़ी की तरह बैठे हुए हैं। और सब लोग बड़ी उत्सुकता से अपना डब्बा खोलते हैं, हाँ, और अपनी अपनी माताओं ने उनको विशिष्ट विशिष्ट भोजन बना के दिया है। और सब लोगों को इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ये नहीं कि हम लोग कैसे ना, बचपन में मुझे याद है अभी भी, सर डब्बा होगा ना डब्बा, तो बीच की छुट्टी में क्या रिसेस में मदली छुट्टी डब्बा खोलेंगे ऐसा और ऐसा खाएंगे, एक पेपर रखेंगे ऐसा, किसी को देखना नहीं चाहिए कि मेरे डब्बे में क्या है, मांगेगा तो मेरा कम हो जाएगा ना, इसलिए उसको हम लोग ऐसे हमेशा ढक्कन ऐसा रख के खाते थे। ये हमारा स्कूल का लीला है, मतलब क्या कहें आपको। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान के बच्चे भी ऐसे नहीं है फ्रेंड्स। सबसे पहले उनको भगवान को खिलाने का है, भगवान के साथ अपने दोस्तों को खिलाने का है। सब लोग पहला डब्बा खोल के भाग रहे हैं भगवान की ओर, ले लो लो ये मेरी मम्मी ने इतना अच्छा बनाया है, और क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं खुद, वो देख रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, अरे मुझे नहीं खाना चाहिए, उनको देना चाहिए, तो मुंह से निकाल कर भी कृष्ण के मुंह में डाल रहे हैं। और कृष्ण को भी माता यशोदा ने जो दिया है वो भी चख के देख रहे हैं, तो वो मधुमंगल के मुंह में डाल रहे हैं, वो उसके सीता माँ के मुंह में डाल रहे हैं, अरे उसके अर्जुन के मुंह में डाल रहे हैं। आप सोच सकते हैं सभी लोगों में कॉम्पिटिशन है, सब लोग अपना अपना टिफिन खोल रहे हैं और खा खा के मुंह से निकाल निकाल के भगवान के अपने दोस्तों के मुंह में डाल रहे हैं, और मधुमंगल दूर से आ रहे हैं थोड़ा देर से, उसके पास ये लस्सी का पात्र है। अभी आप सोच सकते हैं ब्रज की लस्सी है वो, कामधेनु गायों से दूध से बनाई हुई लस्सी, सांदीपनी मुनि के घर की लस्सी है वो। तो पात्र लेके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि अरे सभी लोग ये जो है ना, उसमें से एक ही ब्राह्मण है मधुमंगल, बाकी सब लोग ऐसे ही वैश्य परिवार के, गोपाल परिवार के, वो सबकी जूठन खा रहे हैं। मधुमंगल को लगता है नहीं नहीं मैं तो मेरी लस्सी किसी को दूंगा नहीं, इसलिए वो दूर खड़े होकर घटाघट लस्सी पी रहे हैं। उतने में कृष्ण भगवान उसके फ्रेंड का नजर वहां पहुंचती है, अरे मधुमंगल तो अकेले लस्सी पी रहा है, बाकी सब लोग तो बांट के खा रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, ये भी वो देखता है कि मुझे देख रहे हैं, इसलिए वो आखिरी घूंट भी घटाघट पीने का कोशिश करते हैं। उतने में सब लोग भागते हैं और कृष्ण भगवान सबसे पहले भागते हैं, तब तक वो सारा घटाघट पी लेगी, सब लोग कैसे एकदम घटाघट कैसे पिएगा वो, तो गाल में भर लेता है, तो गाल ऐसे जो ऐसे हो जाते, तो वो उसको पीने वाला है तो भगवान जाके उसको गाल पे गुलचा मारते हैं। सोच सकते हैं आप, फूके हुए गाल, लस्सी भरी हुई है उसके अंदर, भगवान दोनों हाथ से गुलचा मारते हैं उसको, तो एक धार निकलती है लस्सी की मुंह से और भगवान उसको तुरंत कैच करके पी लेते हैं। आप बोलेंगे ई क्या कर रहे हैं, यही सिखाया था क्या माँ ने, यही संस्कार दिए थे क्या, ये सब हमारा सोच विचार है। हमारे संस्कार में कहा गया है किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, अपवित्र माना गया वो, लेकिन उसका एक क्या कहते हैं, हर नियम का एक अपवाद होता है ना, हमको किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए लेकिन भगवान का झूठा खाना चाहिए, ऐसे भी लिखा गया है। भगवान का झूठा नहीं, उच्चिष्ट कहते हैं उसको, वो उच्चिष्ट खाने से परम पवित्रता और शुद्धि प्राप्त होती है। तो ये तो भगवान के भक्त का जुड़न है, उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जो भगवान को भी वांछित है, भगवान भी चाहते हैं उसको। तो ये धार लेकर वो पी रहे भगवान, सब देख रहे, अरे क्या आइडिया है लस्सी पीने का, वाह क्या तरीका है, किसी के मुंह पे गुलचा मार के धार निकल रही है उसको पिया जा रहा है, वो भी इतना कुशलता से कि एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रही, बोलो। लेकिन एक व्यक्ति देख रहा है, वो कौन है, ब्रह्मा जी। उसने खबर सुनी कि अगासुर का मृत्यु हो गया, 1-7 साल के ग्वाल बाल ने इतने भयंकर राक्षस को मारा, क्योंकि अगासुर के भय से देवता भी कांपते थे और दर दर के भागते थे जब अगासुर वहां आता था। सोच सकते हैं आप, ब्रह्मा जैसे लोग भी कांपते थे, सब देवता लोग में डर फैल गया था कि अगासुर के वजह से, वो अगासुर को एक बालक ने मारा ऐसा भी न्यूज फैल गया सब देवता लोग में, ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच गया और देवताओं ने बताया भी, अरे वो जो बालक बनकर जो है ना वो कृष्ण भगवान है गोलोकेश्वर। तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, बोले मैं खुद जाके देखता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। तो हंस पर बैठकर जब आ रहे हैं ना, अघासुर का अभी भी वध हो गया है, उसके बाद में खाना खा रहे हैं सब लोग बैठ के, अपना आनंद ले रहे हैं वन भोजन का, तो ये ऊपर से देख रहे हैं, तो इनका विश्वास हुआ कि भगवान नहीं हो सकते। एक कैसे भगवान हो सकते? अरे हम जब भगवान को भोग लगाते, इतना मंत्र बोलते, इतनी घंटी बजाते, इतना नियम पालन करते, इतना शुद्धिकरण का नियम रखते हैं उसके अंदर, बहुत देर रुकते हैं, फिर घंटी बजाते, फिर निकालते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं, फिर सबको बांट कर धीरे धीरे खाते हैं उसको, इतना सारा नियम है उनके महाप्रसाद प्राप्त करने का। यहाँ पर क्या, वो मुंह की निकाल भी खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, इनके मुंह की निकाल के वो खा रहे हैं, उनके मुंह की निकाल के ये खा रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते? ये तो मूर्ख बालक हो सकता है। और ऐसे करते हुए उन्होंने बछड़ों को चुराना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सब मग्न है ना खाने में, बछड़े चर रहे हैं, बछड़ों को चुरा लिया। ये तुरंत ग्वाल वालों को ध्यान में आया, अरे बछड़े कहाँ गए? तो कृष्ण भगवान अपने भक्तों के इतने सेवक भाव में रहते हैं, सेवा करने के भाव में, बोलते हैं आप लोग अपने आनंद में डिस्टर्ब मत होना, चलते रहने दो जो चल रहा है, मैं जाके देखता हूँ, आप वहीं बैठो, जो करना है करते रहो, मैं जाकर देख के आता हूँ कहाँ पर गए हैं बछड़े। जाके देखते हैं बछड़े सब गायब हो रहे हैं, और जब वो बछड़ों को दुख देखने के लिए चले गए, ब्रह्मा जी यहाँ ग्वाल वालों को भी गायब कर देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जब कोई भगवान की परीक्षा करता है या भगवान के लिए प्रश्न पूछता है, तर्क वितर्क करता है, उसको भगवान का लीला कभी समझ में नहीं आता है। भगवान का लीला उन लोगों के लिए जो श्रद्धा रखते हैं भगवान के ऊपर, नहीं तो वो आम व्यक्ति समझकर उसकी निंदा करेंगे, घृणा करेंगे। क्या भगवान गीता में कहते हैं, अवजानंती माम मूढ़ाम मानुषिम तनुम आश्रितम। मैं जब बालक बनकर आता हूं या मनुष्य बनकर आता हूं, शरीर धारण करके आता हूं, तो अश्रद्धालु लोग मुझे निंदा करते हैं, अवजानंती माम मूढ़ाम, मूढ़ लोग मेरी निंदा करते हैं, ये समझते हैं कि हमारे जैसा ही आदमी है ये, हमारे जैसा ही लड़का है ये, और निंदा करते हैं, तो मेरे दिव्य भाव को समझते नहीं है। लेकिन जो श्रद्धा से मेरी लीलाओं को सुनते हैं, मेरे धाम में लौट के आ सकते हैं। ब्रह्मा को भी टाइम लगा समझने के लिए, जब भगवान ने चमत्कार के बाद चमत्कार के बाद चमत्कार दिखाए ना, तब इनका लाइट जल गया, प्रकाश पड़ा दिल में उनके, दिमाग में, फिर शरणागत हो गए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये भगवान की लीला इतनी दिव्य है कि ब्रह्मा तक के समझ में नहीं आती है। वो क्या कारण है उसका, जब ऐश्वर्य भाव लेकर हम भगवान को जाते हैं ना, कि मैं कुछ हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं इस परिवार का प्रमुख हूं, मैं धनवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं विद्यावान हूं, कई प्रकार के अहंकार होते हैं, ऐसे प्रकार का अहंकार लेकर जाएंगे ना भगवान के साथ, भगवान के पास जाएंगे, तो भगवान की कुछ भी बात हमारे समझ में नहीं आएगी। जब ब्रह्मा जी ने ये समझ में आया उनके कि मेरा सारा ज्ञान बेकार है, मेरी सारी बुद्धि बेकार है, मेरा सारा पद बेकार है, मेरा सारा ऐश्वर्य बेकार है, मेरा सारा अधिकार बेकार है, जब उन्होंने अपने झूठे अहंकार को त्याग दिया और वे सामान्य स्थिति में आ गए, तब उनको भगवान का गौरव समझ में आया, तब वो भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए और वो स्तुतियां गाने लगे। तो भगवान कह रहे हैं, पहले तो गलती करते हैं, स्तुति गाने लगते हैं, मैं तो बच्चों के साथ खेल रहा हूं, उनको डिस्टर्ब करते हैं मुझे, है ना, मैं अच्छी तरह खेल रहा था अपने बालकों के साथ में, आनंद ले रहा था, इतना आनंद हो रहा था कि हम लोग मग्न थे, जो भी कर रहे थे उसमें मग्न थे, इतना आनंद ले रहे थे, उसमें तुम आए बीच में, बच्चों को चुराया, ग्वाल वालों को चुराया, फिर मुझे फिर सब में विस्तारित होना पड़ा, फिर मैंने सबको विष्णु बनाया, फिर सब विष्णु के साथ में, हर एक विष्णु के साथ 33 करोड़ देवता एक एक विष्णु की पूजा कर रहे हैं, वो देखकर तुम भ्रमित हो गए, फिर मैंने सब विष्णुओं को देवताओं को गायब कर दिया, फिर मैं अकेला हो गया, तब तुमको समझ में आया, अरे ये तो हमारे गोलोकेश्वर कृष्ण भगवान है, इतना चार चार पांच पांच स्टेप मेरे को करना पड़ा, लेकिन हुआ क्या, तुमने हमारे चलती हुई आनंदमय लीला में भंग कर दिया, फिर पश्चाताप किया, फिर पश्चाताप करने के बाद प्रार्थनाएं बोलना आरंभ किया, किए हुए गलती को सुधारने के लिए, वो मुझे सुनना पड़ रहा है यहां पर, मुझे मेरा मन तड़प रहा है बालकों के साथ खेलने के लिए, और तुम प्रार्थना करते जा रहे हो, चलो ठीक है बोलो, बोल दो एक बार, खत्म करो अपना काम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बृहद भागवतामृत में स्वयं कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये देवता लोग बार बार बीच में आते हैं, कुछ ना कुछ गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर मुझे वहां पर खड़ा रहकर इनकी प्रार्थना सुननी पड़ती है। मतलब क्या हुआ, भगवान को देवताओं के प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सुनते जरूर है वो प्रेम से, इंटरेस्ट कहां पर है? अपने ब्रजवासी बालकों को और माता के पिता के पीछे में उनको लीला करने में इंटरेस्ट है, बाकी किसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे भगवान नहीं है जिनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, जो केवल प्रेम के भूखे हैं, किसी के ऐश्वर्य शक्ति ये वो किसी के प्रभावित नहीं होते, सब उनके द्वारा ही प्राप्त होता है, कैसे प्रभावित होंगे? लेकिन प्रभावित होते हैं केवल प्रेम से, क्योंकि ये सारा जो भी हमारे पास है ना दुनिया में, जो हम समझते हैं कि हमारे पास में है, हमारा है, समझो विद्या है, यौवन है, सौंदर्य है, प्रॉपर्टी है, अधिकार है, क्या क्या पावर है हमारे पास, जो जो कुछ हम अपना समझते हैं, सोचते हैं कि हमने कमाया, मेहनत किया, वो सारा भगवान का दिया हुआ है, उसके ऊपर गर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा ऐसा ओरिजिनल क्या हो सकता है? हमारा ओरिजिनल एक ही है, वो है हमारा प्रेम का भाव, जो हमारा खुद का प्रोडक्ट है, खुद का निर्माण है, उसी में भगवान को इंटरेस्ट है। अगर वो है तो भगवान के आप, भगवान आपके हो सकते हैं, बाकी सब कुछ जो हम अपना समझते हैं वो सब उनका ही दिया हुआ है, उसमें उनको ही जाके सिफारिश करने की और उनके साथ में सामने जाकर गर्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हंसी की बात है ना। मैंने आपको दी है चीज, वही पहन के मुझे आप गर्व करके दिखा रहे हो, मेरे सामने ऐड रहे हो, भगवान हंसेंगे ना कि नहीं हंसेंगे? लेकिन ये सबको छोड़कर जो हमारे पास है, जो अपना नहीं है, जो हृदय का भाव प्रेम का अगर हमारे पास में है, तो वो लोनी की तरह है, नवनीत की तरह है, मक्खन की तरह है, उसको खाने के लिए भगवान आते। इसलिए भगवान ने नवनीत चुराया, कारण क्या है उसका? ये भगवान, ये जो नवनीत है ना, नवनीत ये जैसे दूध के अंदर छुपा हुआ रहता है और उसको प्रक्रिया करने के बाद में प्रकट हो जाता है ना, दूध में होता है कि नहीं? मक्खन होता है, घी होता है, क्रीम, सब कुछ होता है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ प्रक्रिया करने के बाद में फिर क्रीम प्रकट होता है, फिर क्रीम के बाद में फिर मक्खन प्रकट होता है, उसके बाद और प्रक्रिया करेंगे तो घी प्रकट हो जाता है। तो वैसे हमारा हृदय है दूध की तरह है, लेकिन प्रेम भक्ति का मक्खन जब उसमें पैदा होता है तो वो लेने के लिए भगवान आते हैं, वो नवनीत चोर भगवान वो है। इसलिए उन्होंने जाकर ब्रज में जाकर नवनीत चुराया, वो नवनीत नहीं चुराया एक्चुअली, उन्होंने गोपियों के हृदय का भाव चुराया। अपने घर में पेट भर मक्खन खाने के बाद भी गोपियों के घर में जाकर मक्खन खाते थे, क्योंकि वो उनके हृदय का भाव मक्खन के रूप में स्वीकार करने के लिए जाया करते थे, खुद को चोर कहलाने पर भी जाते थे वहां पर, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग कॉल्ड एज चोर। श्री कृष्णा वुड गो एंड स्टील बटर, उनको ये परवाह नहीं कि मुझे क्या, मैं तो गोलोकेश्वर हूं, मुझे तो चोर कहा जाएगा, फिर मेरी क्या रह जाएगी इज्जत, उनको उसकी परवाह नहीं है। खुद को चोर कहलाने की रिस्क लेकर भी वो गोपियों के घर में जाकर उनके हृदय का भाव मक्खन के रूप में खाया करते थे, वो भी हर रोज जाके खाया करते थे, और कहते भी थे कि सारे वैकुंठ का, अनंत वैकुंठ का ऐश्वर्य त्याग करके मैं इस पृथ्वी पर इस ब्रजवासियों के घर का मक्खन चुरा कर खाने के लिए आया हूं, ये छाछ के लिए तो मैं आया हूं, कोई परवाह नहीं उनको उसकी। ऐसे हमारे प्रेमी भगवान हैं, तो उनकी लीलाओं का श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, षड विकारों से मुक्त हो जाएगा, और फिर उस हृदय में प्रेम का दीपक जागृत हो जाएगा, और उस प्रेम के दीपक के प्रकाश में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए, अभी हमारे जन्माष्टमी का उत्सव आरंभ हो रहा है, भगवान की अनंत लीलाएं हैं, इसमें एक और लीला सुनाएंगे आपको आज के जाने के पहले, लेकिन कल परसों जो भगवान की लीलाओं का वर्णन होगा उसको श्रद्धा से सुनना, सबसे पहले जगे रहकर सुनना, क्योंकि आप उपवास करेंगे तो थक जाएंगे, हम तो ग्वाल बाल तो है नहीं, 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए ऐसे देखते रह गए, जगे भी रहे, नींद भी नहीं आई, तो आपको प्रयास पूर्वक जगे रहना है, श्रद्धा पूर्वक सुनना है, प्रेम से लीलाओं को कान के माध्यम से ग्रहण करना है, क्योंकि इन लीलाओं को श्रवण करने से अनंत प्रेम की प्राप्ति होती है, अनंत भाग्य का उदय होता है। तो ऐसे ही भगवान, दो प्रकार की उनके गौपालन लीला है, एक प्रकार की लीला है बछड़ों का पालन, बछिया बछड़े, यानी कि वत्सपाल लीला। वो जब भगवान 5 साल से छोटे उम्र के थे ना, तभी उनको केवल बछड़े और बछिया ही दिया करते थे, और उसका एक नियम भी था, नंदगांव से जब बछड़े और बछिया चलाने जाएंगे तो नंदगांव के चोटी पर जाकर आखिरी खिड़की पर जब माता खड़ी रहेगी तो वहां से उनको दिखने चाहिए उतना ही दूर जाना है, वहां से कहां तक दिखाई पड़ेगा, चारों तरफ उतने ही रेंज में जाना है, उसके आगे जाना नहीं है, वो उनका नियम था। माता को कभी भी दिल हुआ दिखने का तो दिखना चाहिए कि हाँ पूर्व दिशा में ये वन में है। 5 साल जब पूरे हुए तो 5 साल पूरे होने के बाद में जब गोपाष्टमी आई, कार्तिक के अंदर की जो अष्टमी आई, तब उनको बड़े गायों का जिम्मेदारी दिया गया, तब वो गोपाल बने। तब तक क्या थे वो? तब तक क्या थे? वत्सपाल। बोलिए, तब तक क्या थे? उसके बाद में बने गोपाल। तो वत्सपाल लीला में एक बार वो गए खदीर वन में। ये जो खदीर वन है ना, उसका अर्थ यह है, खदीर यानी कत्था। कत्था मालूम होता है, वो पान में लगाते हो, लाल होता है ना, लाल रंग कैसे पैदा होता है, वो कत्था बोलते हो उसको। वो पेड़ पे आता है, उसको खदीर के पेड़ कहते हैं। आज भी हमारे आयुर्वेद में आप जानते हैं कि वो खदीर की वो वटी बनाते हैं, और गला जब खराब होता है ना तो खदीर आदि वटी को चूसते हैं तो गला ठीक कर देता है वो, ऐसा उसका औषधि गुण भी है। तो उस वन में बहुत सारे खदीर के वृक्ष थे, और वो वन वन जहाँ वन जो था वो नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद बाबा का था। उसमें एक बड़ा सरोवर था, उसका नाम था माधव सरोवर, और उसके अंदर बहुत गैयाओं को बैठने की जगह थी। माधव सरोवर में उपनंद बाबा अपने गायों को पानी पिलाया करते थे, ऐसा सुंदर वातावरण था वहां पर। आज भी बरसाने से वो 3-4 किलोमीटर आगे बरसाने से उत्तर दिशा में वो वन है, खदीर वन, छाता की ओर लेफ्ट में आता है। तो खदीर वन में कृष्ण भगवान अपने बालकों को लेकर गाय चराते चराते, मतलब बछड़ों को चलाते चलाते पहुंच गए वहां पर। तो जैसे ही वहां पहुंच गए ना, तो वो बछड़े पानी पीने लगे, बालक भी गए, तो अचानक बालकों ने क्या देखा, अरे बाप रे, एक सफेद रंग का बगुला जो है वो माधव सरोवर के किनारे में बैठा हुआ है, सफेद रंग का है पूरा, और उसका सर जो है वो आकाश के बादलों में है, वज्र की तरह कठिन सर है उसका, और वो सर, उसकी लंबी चोंच वो बादलों में घूम रही है, और वो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है जमीन की ओर, चोंच नीचे करते हुए। सब लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, और जैसे ही पीछे हटते हैं अचानक वो झुक जाता है, अपनी चोंच खोल लेता है और कृष्ण भगवान को निगल जाता है। ये सब पलक झपकते हो जाता है। अभी आप देख रहे हो, आश्चर्य कर रहे हो, पानी पी रहे हो, और कुछ होने के पहले ही चोंच खोल के भगवान को लेके निकल गया भगवान को। सब लोग क्या बोलने लगे, खाए रोए, मतलब क्या है, खा रहा है। ब्रजभाषा में कैसे बोलते हैं, खाए रोए। उसका नाम क्या पड़ गया, खायरा। उस जगह का नाम है खायरा आज के तारीख में। एक नाम है खदीर वन। सब लोग डर गए एकदम। वे क्या करेंगे, उनके प्राण भगवान है ना, उनके सर्वस्व है वो, उनके सिवा उनका गाय जब चराते ना, बछड़े चलाते ना, तो ये बछड़े आगे आगे रहते, ये इनको देखते रहते हैं, देख देख के चलते हैं, अपने नैनों में बसा के ही चलते हैं, उनको नैनों से हटाकर चल ही सकते नहीं है, उनके नैनों का तारा है वो, उनके नैनों का विषय है वो, इतने प्रिय है कि उनको देख देख के ही चलते रहते हैं। नाम तो गौचारण का, वत्स पालन का है, लेकिन देखना केवल उनको ही है। ऐसे ही उनके आंखों के तारे अचानक उनके आंखों के सामने निकले जाते हैं, वे आकाश से सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि वो कौन था, बकासुर, पुतना और अगासुर का भाई था वो, तीनों आसाम में रहते थे, प्राग ज्योतिषपुर नाम था आसाम का पुराना जमाने में, नरकासुर का राज्य था वहां पर, और नरकासुर के साथ में ही 3 दिन रहते थे, कौन, पुतना, अगासुर और बकासुर। अगासुर पुतना का तो भगवान ने ऑलरेडी वध कर दिया है, तो बकासुर बदला लेने के लिए आता है, बोला अच्छा मौका है, इधर पानी पीने आते हैं, उधर मार दूंगा उसको, और खा जाता है। जैसे ही भगवान को वो निकलता है, आकाश में सब देवता इकट्ठा होते हैं। अभी क्या है, देवताओं के लिए तारणहार कौन है, भगवान ही है, वो जानते हैं भगवान को निकल गया तो डेस्परेट हो गए ना, अभी हमको भी जाए तो जिंदा रहना है तो मर जाना है। सब लोग ना एकदम क्या कहते हैं, पागल होकर आक्रमण करना आरंभ करते हैं, मतलब अभी कहते हैं ना डू और डाई, पता नहीं भगवान को निकल गया मतलब हमको भी मार सकता है, लेकिन हमको तो युद्ध करना ही है, और मरना तो है तो युद्ध करके ही मरेंगे। ऐसे अगतिक होकर, असहाय होकर, डेस्परेट होकर सब देवता एक एक करके आ जाते हैं। सबसे पहले इंद्र आते हैं और अपना जो सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है वज्र उस पर फेंकते हैं। वज्र गिरने पर वो थोड़ा जमीन पर गिर जाता है, फिर वापस उठ जाता है। आपको पता है वज्र का मतलब क्या होता है, वज्र का आघात सहन करके कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन इसको कुछ नहीं होता है। उसके बाद ब्रह्मा आते हैं और ब्रह्म दंड फेंकते हैं उसके ऊपर। ब्रह्म दंड का आघात सहन करने के बाद में 2 घड़ी यानी 6 घंटा के लिए बेहोश हो जाता है, 2 घड़ी। लेकिन फिर जमाई देते वो उठता है और फिर आक्रमण करने लगता है। फिर शिवजी आते हैं और त्रिशूल फेंकते हैं उसके ऊपर, त्रिशूल के आघात से उसका एक पंख कट जाता है लेकिन मरता नहीं है ये। आप जानते हैं पशुपतास्त्र त्रिशूल का प्रभाव है उसका, इसको स्पर्श होता है वो मर जाता है, केवल एक पंख कटता है और जीवित रहता है। उसके बाद में अग्निदेव आते हैं, उनके पास कौन सा अस्त्र है, कौन सा अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है ना। तो उनके रोए यानी कि रोमे ना ये बाल वो जल जाते हैं केवल, कुछ नहीं होता है। वायु आते हैं, उनके पास कौन सा अस्त्र है, वायव्य अस्त्र, तूफान। तो वो तूफान अस्त्र छोड़ते हैं तो वो कुछ ऐसे हवा में उड़ते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, कुछ नहीं होता है, मतलब नथिंग हैपेंस। आपने देखा है ना अभी जब भी तूफान आया था केरला में तो क्या हुआ, घर के घर गिर गए, इतना हवा का झोंका था, इतना स्पीड की हवा थी कि महल के महल ऐसे जमीन पर गिर गए। इतनी शक्ति होती है हवा के अंदर। तो वायु अस्त्र के प्रभाव से क्या होता है, केवल थोड़ा सा ऊपर उठता है 2 फुट जमीन से और वापस वहीं पर आ जाता है। उसके बाद यमराज आते हैं, अभी आप जानते हैं ना यमराज का यमदंड होता है, यमदंड के सामने कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो यमदंड उस पर प्रहार करते हैं तो क्या होता है, यमदंड टूट जाता है और बकासुर को कुछ नहीं होता है। उसके बाद सूर्यदेव आते हैं, अपने प्रकाशमान रथ पर बैठकर आते हैं और एक साथ एक ही साथ 100 बाणों का आघात करते हैं उसके ऊपर, 100 बाण छोड़ते धनुष से, तो सारे बाण जाके दूसरे वाले पंख में अटक जाते हैं और कुछ नहीं होता है उसको। फिर कुबेर आता है, कुबेर का तलवार लेके आता है, तलवार से जब प्रहार करता है तो दूसरी पंख काट देते हैं उसका, जिसमें सूर्यदेव के बाण लगे हुए ना वो पंख काट कर वो पंखहीन हो जाता है लेकिन मरता नहीं है फिर भी। फिर चंद्र आते हैं, चंद्र कैसे है ठंडे है ना, तो उनके पास कौन सा अस्त्र है, निहारिका अस्त्र। जब वो छोड़ते हैं ना तो सब फ्रीज हो जाते हैं, बर्फी बर्फ बन जाते सब लोग, कुछ हिल नहीं सकते हैं। जैसे ठंडी बढ़ते हैं, ठंडी में कैसे होते हैं हम लोग हाथ नहीं हिला सकते, तो वो निहारिका अस्त्र छोड़ते हैं तो वो कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाता है, शीत पीड़ित बोलते हैं उसको, शीत पीड़ित हो जाता है और मूर्छित हो जाता है, फिर वापस जग जाता है, उसका परिणाम भी समाप्त हो जाता है। फिर वरुण देव आते हैं और वरुण पास से उसको घसीटते हैं लेकिन आगे नहीं खींच सकते उसको, वरुण पास भी निष्प्रभ हो जाता है। उसके बाद में भद्रकाली आती है देवी और अपने गदा से उसको प्रहार करती है, गदा के प्रहार से फिर वो मूर्छित हो जाता है, फिर उठ जाता है और फिर गदगड़ाते हुए आक्रमण करता है सबके ऊपर खदेड़ते हुए। फिर स्कंद यानी कार्तिकेय आता है और अपनी शक्ति चलाता है उसके ऊपर। आप सोच सकते हैं देवताओं में सबसे श्रेष्ठ जो देवता है, सभी लोग आते हैं अपने श्रेष्ठ अस्त्रों का प्रहार करते हैं उसके ऊपर, कुछ नहीं होता है। जब स्कंद आते हैं तो उसकी एक टांग टूट जाती है बस, केवल शक्ति के प्रवाह से। लेकिन उसके बाद इतना गुस्सा आता है उसको कि अपनी चोंच से खदेड़ खदेड़ कर सारे देवताओं को भगा देता है। एक समय गर्ग मुनि वर्णन कर रहे हैं कि आकाश में ये सीन है, क्या सीन है, सारे देवता शिव ब्रह्मादि सब भाग रहे हैं चारों दिशा में और सबको ये खदेड़ रहा है अकेला। सोच सकते हैं आप, ब्रह्मा शिव आदि सारे देवताएं भाग रहे हैं चारों दिशा में और अपनी चोंच का प्रहार करके ये सबको खदेड़ रहा है। अभी सोच रहे हैं कि भगवान भी चले गए, हम भी परास्त हो गए तो क्या होगा हमारा सबका। उतने में जो बकासुर के मुंह के शरीर के अंदर जो भगवान बैठे हैं वह अपने आप को उष्ण कर देते हैं और अपने आप का आकार बढ़ाते हैं, महिमा सिद्धि से अपना आकार बढ़ाते हैं और अग्नि से भी भयंकर उष्णता बढ़ाते हैं। तो उसके गले में वो क्या होता है ना, अवरुद्ध होता है गला उसका, अग्नि से क्रुद्ध होकर वो भगवान को निगल लेता है बाहर, सहन नहीं कर सकता उतनी अग्नि अंदर उसका, उसका प्रकाश इतना, अग्नि का प्रकाश तेज उष्णता और प्रेशर दबाव इससे प्रभावित होकर वो चोंच खोलकर भगवान को बाहर फेंकता है। फिर भगवान में उसमें युद्ध होता है, सब देवता लोग आकाश में जो जिसको भगाया गया है वो ऐसे खड़े होकर युद्ध देख रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके, क्योंकि इतना भयंकर राक्षस जो हमारे ब्रह्मदंड यमदंड त्रिशूल को भी प्रभावित नहीं हुआ, अब ये बालक हमारे भगवान बिना शस्त्र के युद्ध कर रहे हैं, बहुत देर युद्ध करते हैं, सब लोग खड़े होकर देखते हैं क्या हो रहा है, क्या होगा क्या होगा। कुछ लोग छुप के देख रहे हैं, पता नहीं अगर ये जीत गया और हम लोग देख रहे हैं तो हमको आके मार देगा। तो कुछ लोग बादल के पीछे छुप रहे हैं, कुछ सामने देख रहे हैं, तो जमीन पर बाल बाल देख रहे हैं। भगवान उसकी पूंछ पकड़ते हैं, गोल गोल घुमाकर पटक देते हैं उसको, फिर वो तिलमिला उठता है, फिर क्रोध से उठता है, वापस आक्रमण करता है और चोंच से पकड़ने का प्रयास करता है, फिर चोंच खोल के एक बार आता है। भगवान झट से अपने एक पैर उसको चोंच पर रखते हैं दूसरी चोंच को टुकड़े को हाथ में पकड़ते हैं, और जैसे किसी पेड़ का पत्ता हम फाड़ते हैं ना ऐसे, वैसे भगवान उसको फाड़ कर फेंक देते हैं। और जैसे ही वो दोनों चोंच के भाग पकड़कर भगवान फाड़ देते हैं तो बकासुर का वध हो जाता है। बोलो बकासुर वध करने वाले भगवान कृष्ण की जय हो। सारे लोग देवताओं से पुष्प वृष्टि करते हैं, आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं, भगवान की विजय पर जय जयकार करते हैं, और सबके आंखों के सामने बकासुर के शरीर से एक ज्योति निकलती है और कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाती है। तो ये कथा जो है ना, वो नारद मुनि राजा बहुलाश्व को सुना रहे हैं, गर्ग मुनि उसको संकलन कर रहे हैं, गर्ग मुनि ने लिखा है, लेकिन संवाद किस में हो रहा है? नारद मुनि और बहुलाश्व राजा में हो रहा है। बहुलाश्व राजा कौन थे? वो मिथिला के राजा थे। तो राजा पूछते हैं, अरे इतना बड़ा राक्षस था वो, इतना पापी था, उसका शरीर का ज्योति आत्म ज्योति भगवान के शरीर में कैसे विलीन हो गया? तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि उत्कल नाम एक हयग्रीव नाम का राक्षस था, वो सत्ययुग में हुआ है, बहुत भयंकर तपस्वी था वो। उसने वरदान मांग लिया कि मेरा वध केवल मेरे जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। उसका नाम था क्या? हयग्रीव, मतलब क्या? ग्रीव यानी गर्दन, हय यानी घोड़ा, जिसकी गर्दन घोड़े की है उसका नाम है हयग्रीव। तो जो मेरा जैसे ही होगा वही मेरा वध कर सकेगा। उसको पता था कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो भगवान ने हयग्रीव अवतार ले लिया, उसके जैसा ही बने भगवान और उसका वध कर दिया। तो उसका एक पुत्र था उत्कल, बहुत सुंदर था वो, बहुत ही सुंदर ज्ञानी तपस्वी सिद्ध था वो। देवताओं के सारे राज्यों पर आक्रमण करके उसको जीत कर 100 स्वर्गीय साल तक वो राज्य कर रहा था, देवताओं के सारे राज्य पर। देवता लोग छुप को छुप कर रहते थे उस समय। तो अपने बल से मत होकर, अपने अधिकार से मत्त होकर एक दिन वो जाजली मुनि के आश्रम में आया। जाजली मुनि का आश्रम कैसा था? सब प्राणी मात्र जो है मित्रता के आधार पर रहते थे, उसमें कोई भेदभाव द्वेष भाव कोई घृणा भाव नहीं, सब मित्रता भाव। शेर भी गले लगा रहा है हाथी को, शेर भी हिरण से गले मिल रहा है, ऐसे सुंदर वातावरण था। तो एक तालाब था, उसके अंदर मछलियां घूमती रहती थी। तो तालाब के किनारे आ गया, उसके हाथ में एक ना एक डंडी थी, जैसे होती ना बांसुरी होल वाली ऐसी। उस जाजली मुनि के आश्रम के तालाब के किनारे पे आ गया, बैठ गया और ऐसा वो डंडी छोड़ दिया पानी में। तो कुछ मछलियां उसके अंदर कुतूहल से आ गई, तो ठाट करके मुंह में डाल दिया उसने अपने, और खा दिया, खा गया उसको, फिर डल दिया पानी के अंदर। फिर कुछ मछलियां आई, फिर खाने लगा। ये देखकर जाजली मुनि वहां से आए, बोले अरे मेरे आश्रम में कोई किसी का भेदभाव, किसी कोई क्रोध भाव, कोई वैर भाव नहीं रखता, यहां पर बंद कर दिया अपना मछली खाना। तो फिर भी उनके सामने डाल रहा है मछली, प्रवेश कर रही, खा रहा है, उनके सामने ही खा रहा है। तो जाजली मुनि को क्रोध आया, उन्होंने कहा इतना मछली खाने का शौक है, जा बगुला बन जा। तुरंत इतना सुंदर, इसका शरीर इतना सुंदर था देवता समान, वो बक बक जो वो तो व्यक्ति था वो बगुला बन गया, तुरंत बकासुर बन गया वो। जैसे ही दिखा कि अरे इतना सुंदर शरीर था देवता का, वो स्वरण तुरंत एकदम बगला बन गया, तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वो समझ में आया कि मैंने गलती किया और मुनि मुझसे बहुत ज्यादा बलवान है। मुझे तो बल का इतना गर्व था कि मैं देवताओं को परास्त करके उनके राज्य पर 100 स्वर्गीय साल तक राज्य किया था, तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन इस बूढ़े साधु के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक श्राप दिया तो पूरा शरीर ही बदल गया। तो एकदम चरणों में गिर के माफी मांगने लगा, महाराज माफ करना, मैं तो मत गर्व से मत्त हो गया था, मुझे ज्ञान नहीं था कि आप इतने महान हो, अभी मैं होश में आ गया हूं, मुझे उस श्राप देना, कुछ वरदान देना, कुछ कंसेशन देना, डिस्काउंट देना। ऐसा होता ना हमारा, हमेशा गलती करते फिर डिस्काउंट मांगते। ठीक है, अभी तो उसकी मति शुद्ध हो गई थी, होश में आ गया था वो, प्रामाणिकता से पश्चाताप कर रहा था। तो फिर साधु ने वरदान दिया कि द्वापर के अंत में मनु के वैवस्वत मनु के 28वें दिव्य युग में जब द्वापर आएगा, उसके अंत में जब भगवान आएंगे तो उनके कृपा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो आ गया बकासुर बन के, और जाजली मुनि के वरदान की वजह से भगवान में लीन हो गया वो। कितना बल होता है साधुओं के अंदर, देखो आप। अभी आप बताइए, साधु ने श्राप दिया कि वरदान दिया? बोलिए क्या मत है आपका? साधु कभी भी श्राप नहीं देते हैं, वो शाप लगता है जब तक हमारी मति सही नहीं होती है। जब आपने पूरी कहानी सुनी तो आपको क्या लगा? साधु ने शाप नहीं दिया, उसको कृष्ण से मिलाने का और कृष्ण में लीन करने का प्लानिंग किया था उन्होंने। इसलिए बकासुर जैसा भयंकर राक्षस बनने के बाद भी साधु की कृपा से बकासुर का उद्धार हो गया और भगवान में लीन हो गया वो। कुबेर के दो पुत्र जब नशा करके नंगा होकर मंदाकिनी गंगा में मस्ती कर रहे थे, नारद मुनि आए फिर भी उन्होंने अपना वस्त्र नहीं पहना। जो कन्याएं थी उनके साथ में नग्न अवस्था में, वो तो वस्त्र पहनकर भाग गई नारद मुनि के आदर भाव से। ये दोनों शराब में मस्त होकर ऐसे ही रह गए। नारद मुनि ने कहा, देखो इतने बड़े देवता के पुत्र हैं ये, इतने खराब बिगड़ रहे हैं ये लोग, तो हम क्या कहते हैं? उन्होंने शाप दे दिया उनको, जाओ पेड़ बन जाओ तुम लोग। लेकिन पेड़ कहाँ बने? वो नंद महाराज के आंगन में पेड़ बने। सारे भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन किया उन्होंने और आखिर में भगवान की उखल अटकी उसके अंदर, गिरा दिया तो भगवान ने उनको प्रेम भक्ति दिया। क्या कर रहे थे? नशा में चूर होकर नंगा नाच कर रहे थे। और कहां पहुंच गए? साधु की कृपा से नंद भवन के आंगन में पहुंच गए। भले पेड़ बनकर रह गए, हजारों साल लाखों साल रहे, कष्ट भोगा, लेकिन अंतिम स्थिति में भगवान के बाल रूप का दुर्लभ दर्शन किया। वो जो देवताओं किसी को दर्शन नहीं होता है भगवान के बाल रूप का, गौलोक में भी नहीं होता है। पता है आपको, गौलोक में भी भगवान का दर्शन 16 साल की उम्र का होता है, नव किशोर अवस्था में रहते हैं। गौलोक में भगवान का बाल रूप नहीं होता है, केवल पृथ्वी में जब आते हैं लीला करने के लिए तब बाल रूप दर्शन देते हैं। सब देवता लोग दर्शन करने आते हैं लेकिन दर्शन प्राप्त नहीं होता है। ऐसे दुर्लभ लीलाओं का दर्शन, बाल लीलाओं का दर्शन भगवान के भक्त की कृपा से इन दो बिगड़े हुए देवताओं के बालकों को निरंतर होता रहा। जो मैंने कहा ना, मणिमय आंगन में खेले दो भैया, वर्णन किया ना अभी आपको, चुम 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 चल रहे हैं, व्यंजन बज रहे हैं, भगवान रीझ रहे हैं, उस सारा दर्शन इन दो पेड़ के रूप में मणिग्रीव नल कुबेर ने किया। इसलिए संत का संग होना चाहिए। संत का संपर्क होने से क्या होता है? भगवान की प्राप्ति होती है। संत हमको पैसा और भाग्य और क्या कहते हैं, गुड लक और धन दौलत और प्रॉपर्टी का वरदान नहीं देते। हम लोग मांगते हैं, महाराज जरा कृपा कर देना, बच्चे का एडमिशन हो जाए मेडिकल में, अभी बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, वो सीईटी दे रहा है, उसको मेडिकल में हो जाए सर एडमिशन, इसको आशीर्वाद दो, आज प्रभु जी इसके लिए प्रार्थना करना, इसके आज सीईटी के एग्जाम है। संत लोगों का मुलाकात होने से ऐसे सब वरदान नहीं मिलते हैं। संत लोगों को मिलने से, उनका संपर्क करने से, उनकी सच्ची कृपा आपको चाहिए तो वो है भगवान की प्राप्ति। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के लिए सेवा और भगवान के प्रति आकर्षण और भक्ति भाव प्राप्त होता है, जो परम कल्याणकारी है। इसलिए इस जीवन, मनुष्य जीवन में संत का संग जो है प्रधान है सबसे। वैष्णव भक्तों का संग जो है सबसे प्रधान एक्टिविटी है। उस प्रधान कार्य करने से फिर नाम प्राप्ति होती है, भगवत विग्रहों की सेवा प्राप्ति होती है, भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, हर भगवान का धाम वास प्राप्त होता है, भगवान का नाम प्राप्त होता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सारी जो जीवन की परम लक्ष्य की प्राप्तियां हैं वो सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए शुद्ध भक्त का संग हमें ढूंढना चाहिए और उस संग में भगवान के विषय में, सत्य के विषय में संग करना चाहिए, जिसको हम संग सत्संग कहते हैं, वही परम कल्याणकारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। कल सवेरे दोपहर सुबह वापस 7:30 को आ जाइए, भगवान की कथा आगे जारी रहेगी। और प्रभु जी बता रहे हैं कि 4:30 बजे कल भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशेष मंगल आरती, उसके बाद 5:15 तक मंगल आरती, उसके बाद 2 घंटा जप और 7:30 बजे दर्शन होगा भगवान का, और 7:30 बजे के बाद में यहाँ पर दोबारा भगवान की कथाओं का सिलसिला जारी रहेगा। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।